और तीसरा संजीव भाई पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, और हेल्थ के बारे में भी जो था ना आज, कि मन को चार्ज करने से हेल्दी लाइफस्टाइल। जो तीसरा है वो है ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव थॉट्स, कि कैसे नेगेटिव थॉट्स को हम चेंज करें। जब हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं मन चार्ज हो जाता है, और जब नेगेटिव थॉट्स हम क्रिएट करते हैं मन क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। सिंपल सा एग्जाम्पल, डिटेल संजीव भाई जी करेंगे। सिंपल एग्जाम्पल, अगर हम ये थॉट क्रिएट करते हैं पता नहीं क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट? नेगेटिव। बैटरी क्या होगी? डिस्चार्ज। बार बार क्रिएट करेंगे तो बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी। इसकी जगह अगर हम एक थॉट क्रिएट करें, क्या थॉट क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, एक बार बोलिए सब, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। बोलिए, पीछे पीछे वाले भी बोले, मेरे साथ सब अच्छा ही। थोड़ा स्माइल करके बोलिए, साथ सब अच्छा। इससे बैटरी क्या होगी? चार्ज। तो इस एक्सपेरिमेंट को करना है दिन भर, एक ही थॉट को, अच्छे अच्छे थॉट को बार बार आप रिपीट करिए, चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। बाकी डिटेल में जो तीसरा है, पॉजिटिव थॉट्स ब्लेसिंग्स, वो संजीव भाई जी एक्सप्लेन करेंगे। ओम शांति, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू, ओम शांति।
तो कैसे एक एलिवेटेड सोल भाई का जैसा विचारों से आपको दिख ही रहा है, जैसा नाम है कमल, वैसे ही पवित्र और वैसे ही विश्व कल्याण की भावना, न जाने कितने आत्म ज्योत जगाई हैं। भाई साहब, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप नीचे माउंट से नीचे रहते हैं और वहां से छोटे से नोटिस पे आ जाते हैं। थैंक यू सो मच, ओम शांति। नाउ आई इन्वाइट ऑन स्टेज बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मा कुमार संजीव भाई जी। एक कमल जा रहा है और दूसरा आ रहा है, संजीव भाई। संजीव भाई जी का संक्षिप्त परिचय, कितना हम्बल उन्होंने अपना परिचय दिया है कि मैं राजयोग स्टूडेंट भी हूं और फैकल्टी भी हूं। तो जो जीवन भर स्टूडेंट बना रहता है वो ग्रो करता रहता है। मास्टर्स इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और पिछले 25 साल से भी ज्यादा से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं और कमाल की सेवाएं कर रहे हैं। रेगुलर ये यहां तो है ही, लेकिन रेगुलर फैकल्टी हैं। हमारा ऐसा ही एक परिसर दिल्ली के पास मानेसर गुड़गांव में है, वहां की भाई सब रेगुलर फैकल्टी हैं क्योंकि दिल्ली में रहते हैं। और सारे मिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस और अनेक ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सी सेवाएं भाई साहब देते हैं, और मोर देन 500 वर्कशॉप्स अभी ये कर चुके हैं, और वेरीड सब्जेक्ट पे वो लेक्चर्स देते हैं, लाइक हैप्पीनेस, एंगर मैनेजमेंट, सर्विस विद स्माइल, खुद भी स्माइल करते रहते हैं, स्ट्रेस फ्री लिविंग, मैनेजिंग द माइंड, वो तो चल ही रहा है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, पॉजिटिव थिंकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओवरकमिंग ईगो एंड एंगर, जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एंड बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। तो ओवर टू भाई साहब, ओम शांति।
ओम शांति। मैं आप सबके सामने बैठ के थोड़ा घबरा रहा हूं। उस समय और ज्यादा घबराता अगर मैं आप सब अपने ऑफिसेस कॉन्शियस में होते, क्योंकि आप जब ऑफिस में होते हैं तो आप अकेले होते हैं, आपके अंडर जितने हैं सारे सब आपसे थोड़ा थोड़ा घबराते हैं। अच्छी बात है ये,
नहीं
नहीं ना। मुखिया मतलब परिवार का मुखिया आ जाए तो टेंशन दूर हो जानी चाहिए कि मुखिया आ गया वो सब कुछ संभाल लेगा। कई बार मुखिया आने से ही दुख शुरू हो जाते नहीं। तो परिवार के आप मुखिया हैं जहां जहां भी हैं, तो मुखिया मतलब उस लोकल एरिया का ईस्ट हैं, गांव की कुल देवी होती है। आप अपनी ब्रिगेड, अपनी यूनिट, अपने डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट हैं। पूरी टीम आपको देखे कि ये आ गया है अब सब संभाल लेगा। इफ यू आर चार्ज्ड, हम या तो एनर्जेटिक रह सकते हैं या एलर्जेटिक रह सकते हैं। आइदर वी हैव एलर्जी और एनर्जी। हेल्दी रिचार्जिंग योर माइंड फॉर हेल्दी लाइफ। व्हाट इज हेल्थ? हमारे दिमाग में हेल्थ का नाम आते ही ना सिर्फ एक बॉडी शब्द आता है, बस हेल्दी बॉडी। आपको पता है मैं दिल्ली से हूं, हमारी जेलों में बहुत हेल्दी बॉडी वाले भरे हुए हैं। हमने जितनी उनकी हेल्थ है ना उतनी हम जिम में जाकर भी रोज एक्सरसाइज करके भी हेल्थ नहीं बना सकते। आर दे हेल्दी? नहीं ना। केवल बॉडी का हेल्दी होना ही हेल्दी नहीं है। हमारे इवहास सेंटर हैं जहां लोग भर्ती हैं, जहां सॉफ्टवेयर किसी का करप्ट हो जाता है या दिक्कत हो जाती है तो उनको वहां भर्ती किया जाता है। उनकी बॉडी भी बहुत हेल्दी है। वो एक एक व्यक्ति 10-10 आदमियों से संभल नहीं रहा और रात दिन उनके पीछे दौड़ लो उनको थकान नहीं होती। आर दे हेल्दी? बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, चाहे वो ट्विन टावर उड़ाया चाहे जो भी उड़ाया, बहुत हेल्दी, बहुत उनका इंटेलिजेंस है। आर दे हेल्दी? आर दे हेल्दी? दिमाग तो बहुत है, हम जो जो चीज चाह रहे हैं, ऐसे करोड़ों पति हमने लोगों देखे, अरबों पति, एक छोटी सी बात में फंसे पड़े हैं, अपनी आंखों को सिविलाइज नहीं कर पाए, देश को बेचने को तैयार हो गए, हनी ट्रैप में फंस के। आर दे हेल्दी? तो हु आर हेल्दी? ये शरीर हेल्दी नहीं है। शरीर हेल्दी मतलब आपकी कार बहुत हाई क्वालिटी कार है, नया मॉडल, लेकिन आपके पास ड्राइवर ढंग का नहीं है, सीट नहीं है उसमें बैठने की, बाहर से बहुत सुंदर है, सीट नहीं है, ऐसा ही है। तो यहां आने के बाद मुझे एक चीज सीखी, मेरे सामने कई आईपीएस भी बैठे हुए हैं, 7 डे कोर्स में तीसरे दिन पता लग गया कि मैं आईपीएस हूं। मैं हूं कुछ नहीं है आपके आगे, पर मैं आईपीएस हूं। मुझे बताया गया आई एम प्योर सोल। आपके 60 साल बाद आरईटीडी लग जाएगा, मेरा मरते दम तक रहेगा आई एम प्योर सोल। पहले दिन मुझे बता दिया गया था हाईएस्ट सर्विसेज जो है आई एम सोल, आई एस। अगर ये सदा याद रहे आई एम सोल, मैं टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, इस सिस्टम जो मेरा है इसके द्वारा जितने भी बाहर पड़ोसी हैं उनका मैं करता हूं। हमने सारी जिंदगी खुश करने में बिता दी, लोगों को खुश रहे नहीं। अब ये मोबाइल बनाने वाले ने इतना दिमाग लगाया है, अगर इसमें कोई काम नहीं हो रहा तो इसका डिस्प्ले अपने आप, देखो अभी लाइट ऑन करिए, थोड़ी देर में ये अपने आप बंद हो जाएगा। क्यों? अगर ये बंद ना हो तो क्यों होगा? बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगी। हमारे को भी पता होना चाहिए, व्हेन आई एम डूइंग नथिंग इट शुड बी क्लोज्ड। लेकिन हमने देखा है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब बहुत कुछ ज्यादा कर रहे होते हैं, और जब कुछ कर रहे होते हैं तब उतनी ड्रेन नहीं हो रही है, नहीं, तब उतनी ड्रेन नहीं हो रही है। तो जब इसने, इसको बनाने वाले ने ध्यान दिलाया कि ये डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, तो इसकी डिस्प्ले बंद कर दी, अननेसेसरी डिस्प्ले ना रहे, हम डिस्प्ले हमारा 24 घंटे रहता है। हाउ डज मोबाइल डिस्चार्ज, कैसे ये डिस्चार्ज होता है? सुबह चार्ज किया, कैसे होता है? यूज व्हेन इट कम इनटू कांटेक्ट विद अदर मोबाइल। मोबाइल से, किसी दूसरे मोबाइल से बात कर रहे हैं तो मोबाइल और मोबाइल का जो आपस में है तो क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। इस पे कोई भी काम कर रहे हैं, जो इसमें स्टोर है उसको यूज कर रहे हैं, कुछ अपलोड कर रहे हैं, तो क्या हो गया? डिस्चार्ज। लेकिन जब चार्ज करना होता है तो इसे पावर हाउस से करना पड़ता है। व्हेनेवर वी कम इनटू कांटेक्ट विद अदर सोल्स वी कीप ऑन डिस्चार्जिंग 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 डिस्चार्जिंग, सम टाइम बहुत स्पीड से, सम टाइम बहुत धीरे धीरे। कुछ आपको पसंद नहीं आया व्यक्ति 15 मिनट में आपको डिस्चार्ज कर दिया। आप इतने बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं, आपके कमरे में ऑर्डरली की परमिशन के बिना अंदर घुस नहीं सकता व्यक्ति, है ना? ऐसा ही है ना सबके साथ? और ये वाले बॉर्डर आपने सबके लिए खोल रखे हैं, जो मर्जी आओ। एक रिक्शे वाला आपका मूड खराब करके भाग सकता है। आप कार में जा रहे हैं और एकदम रिक्शे वाला आगे से आया। मैं किसी मित्र के साथ था, जा रहा था मैं, और वो खुद ही गाड़ी चला रहे थे, उनकी वाइफ उनके बच्चे पीछे बैठे थे, गाड़ी चला रहे, मैं साथ बैठा। ट्रक वाला आगे से निकला तेजी से और वो ऐसे चलाई, तो उन्होंने 4-5 मोटे मोटे शब्द मुंह से निकाले, धाड़ 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 धाड़। मैंने देखा उनकी तरफ, इतना बड़ा ऑफिसर, रॉयल ऑफिसर। मैंने कहा गाली दे रहे हैं आप? मेरे को बोला आपको नहीं दे रहा। मैंने कहा किसको दे रहे हैं? कह रहा ट्रक वाले को। मैंने कहा उसने तो सुना ही नहीं है। पीछे वाइफ ने बोला भाई साहब ये फोन बंद करके गालियां देते हैं, किसी को डांट रहे होते हैं और फोन रखने के बाद 10-12 गाली देते हैं, और बच्चे बैठकर हम बजाओ बजाओ ना बजाओ बजाओ, बच्चे बैठकर सुन रहे होते हैं कि गाली आ रही है। मैंने कहा भाई साहब ट्रक वाले को पता लग जाता कि आप गाली दे रहे हैं तो वो वापस आता, आपके ऊपर से निकल के चला जाता, काम खत्म। तो मेरे को कहता कि क्या मतलब? मैंने कहा 27 साल हो गए मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, आज तक मुख से गाली नहीं निकली, आज तक। गाली क्या, किसी को ऐसा सूचक शब्द नहीं मिला निकला जिससे वो रात को जाके सोचे कि शायद नौकरी करना व्यर्थ है। पहले एक लाइन में 5 गालियां निकलती थी मेरे, 27 साल से एक भी गाली नहीं निकली जब से यहां आया हूं। दिस इज चार्जिंग। अब हम सब, आप सब अपने जहां आप है ना, उस सबको बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं ना? नहीं बदलना चाहते हैं? मैं जाते ही ठीक कर दूं, सबको ईमानदार बना दूं, सबको तरीके से बात कर दूं, सबको कर दूं, सब कुछ करते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे बैठे बैठे। मैं समय देख रहा हूं क्योंकि मुझे बताया गया आपको समय की बहुत वैल्यू है, और पीछे हमारे बड़े भाई जब खड़े हो जाते, हमारे यहां जैसे ही कोई खड़ा हो जाता है ना तो समझ आ जाता है शायद बंद करना है। नहीं, मैं सती भाई ऐसा नहीं सोच रहा, सिर्फ आप मेरे से बहुत सीनियर हैं। स्पिरिचुअलिटी में सीनियर की परिभाषा है whom you can see from near, that is senior। जिसको आप बहुत नजदीकी से देख सके, जान सके, that is senior। और for me God is senior। सबसे बड़ा संसार का हेड, हमारे वहां दिल्ली में सबसे बड़ा जैसे पुलिस है या कोई है, दिल्ली पुलिस का सीपी हो गया, मैं कहता हूं ये कायनात का सीपी है, ये कायनात का डीजी है, और वो मेरा है वो, और ही इज इजीली अप्रोचेबल टू एवरीवन। जितनी बड़ी पोस्ट, जितना बड़ा बरगद, उतनी बड़ी छाया। एक छोटी सी एक्सरसाइज, मैं आपसे पहले परमिशन ले रहा हूं, ले सकता हूं कि क्या आप मेरा कहना मानेंगे जो मैं कहूंगा? कहना मानेंगे ना जो मैं कहूंगा? पक्का? ठीक है, इसमें ईगो मत लाना कि मेरे से छोटी उम्र का मेरे को ऑर्डर दे रहा है। ये ऑर्डर है मेरा आपको कि जो मैं अभी कहूंगा वो करना है। हाथ उठाएंगे सभी? हाँ, मैं देख पा रहा हूं ना, मेरी आवाज आ रही है ना अच्छी पीछे तक? हाँ, हाथों को घुमाएं, अच्छे जैसे कबूतर उड़ाते हैं। हाँ, हाथों को सर पे रखें, माथे पर रखें, कानों को पकड़े, नाक को पकड़े, अपने गालों को पकड़े। क्या ये क्या होता है? अच्छा सॉरी, मुझे पता नहीं। बैठ जी। छोड़ दी, केवल चार पांच को छोड़कर सबने ठोड़ी पकड़ी। और चूंकि ऑफिसर है आप, उधर पीछे किसी ने ये पकड़ लिया कि 50 तो दोनों में है। ऐसे उसने पहले तो मुझे घूर के देखा, शायद ये जानता नहीं है, फिर उसने कहा सॉल्यूशन। और काफी लोगों ने मुझे ऐसे देखा। मैंने आपको पहले ही कहा था जो मैं कहूंगा वो आप करेंगे। अब मैं चाहे टांग पकड़ के खड़ा हूं और आपको बोलूं आपने गाल पकड़ने, तो आपको गाल पकड़ने थे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली 30 सेकंड में आप वो करने लग गए जो मैं कर रहा हूं, जबकि वो करना था जो मैं कह रहा हूं। तो पूरा संसार ये वो करता है जो आप करके दिखा रहे हैं, ये वो नहीं करता जो आप कह रहे हैं। आप जितना मर्जी ईमानदारी के भाषण देते रहिए, जितना मर्जी प्यार की शिक्षा देते रहिए, आप अपने बच्चों को कहिए प्यार से रहना चाहिए, खुद के प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है भाई के साथ, बच्चा मानेगा कहना आपका? नहीं मानेगा। आप जब भी किसी को कहते हैं शांति से रहें, खुद शांति से बाहर आ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं शांति से रहे, कहां से रहेगा? नहीं रहेगा ना, बिल्कुल नहीं रहेगा। इसको चार्ज करना है। पहले समय में एक ही समय में मोबाइल चार्ज होता था, सुबह और शाम तक डिस्चार्ज नहीं होता था, दो दो दिन तक नहीं होता था, वो छोटा नंबर था कीपैड। अब मल्टीटास्किंग इसमें हो रही है, एक एक दिन में चार चार बार डिस्चार्ज करना पड़ता है, और इसके लिए एक साथ लेके चलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? पावर बैंक साथ लेके चलते हैं। ऐसे ही हमारा हाल हो गया है, हमें इसकी भी चार्जिंग करनी है, सोल की। आपकी कार है इतनी महंगी, आप कार में डीजल डाल रहे हैं, रोज ध्यान रख रहे हैं, इसकी सर्विसिंग करनी है, आपने अपने ड्राइवर का हाल ही नहीं पूछा, उसकी तनख्वाह है, उसका खाना नहीं है, तो आपका एक्सीडेंट कराएगा ना किसी दिन आपको। आपने अपने मन का ख्याल नहीं रखा, बाकी सब का ख्याल रखा, वाइफ का रखा, बच्चों का रखा, सबका रखा, अपना ख्याल नहीं रखा। आप पहले, हम बाई एयर सफर करते हैं तो उसमें वो होस्टेज बताती है ना ऐसे करके, जैसे ही ऑक्सीजन कम हो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्यों? जैसे बेचैनी हो सबसे पहले गो इनसाइड, कूल डाउन, कूल कूल कूल, खुद शांत होके फिर डिसीजन लीजिए। मैं कहीं एक मुझे ध्यान नहीं, मैं कहीं गया तो वहां हेड ऑफ द यूनिट, उन्होंने बोले संजीव तुम्हारी सारी बातें सभी मान जाएं तो हमारा देश तो गुलाम हो जाएगा, आप तो बहुत शांति की शिक्षा दे रहे हैं, आर्मी में ऐसा नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कैसा होना चाहिए? खरक मैंने कहा सर दुश्मन को जब गोली भी मारनी हो ना तो ये शांत होना चाहिए, शांति से आप गोली को टारगेट करेंगे, सीधा एक गोली एक दुश्मन। केवल फिल्मों में गुस्से में डड 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 करते हैं और थोड़ी देर में 20 गिरे होते हैं, 20 गिरे होते हैं, नहीं नहीं, हर चीज के लिए शांति चाहिए, हर चीज के लिए शांति चाहिए। जिन्होंने षड्यंत्र रच रहे हैं वो भी शांति में बैठ के षड्यंत्र रख सकते हैं, गुस्से वाला कुछ नहीं कर सकता अपनी तबाही। जब इसकी बैटरी फुल चार्ज है, आपको कहीं से फोन आया, हेलो हाँ जी क्या हाल है, बहुत अच्छे, सब बात होती है, इस आपकी बैटरी 10% रह गई, आपके घर से फोन आया, आप बोलते हैं हाँ काम की बात बताओ, बैटरी जाने वाली है, चेक कीजिए। आपसे जब भी कोई बात करने आते हैं आप बोलते हैं काम की बात बताओ, बैटरी जा रही है, मतलब हमारी हम हमेशा 10% बैटरी लेके घूम रहे हैं। और जब सिग्नल नहीं मिल रहा परमात्मा से या किसी और से, आपको पता है जब सिग्नल नहीं मिलता कैसे बोलते हैं, हेलो कहाँ हो, कहाँ हो, तेज तेज बोलते हैं, तेज तेज। और जब सिग्नल मिल जाता है ऐसे बोलते हैं हाँ आ रहा हूं आ रहा हूं, नहीं तो चेहरा बढ़ जाता है। आज आपका आपके परिवार वालों से, आपकी यूनिट वालों से, आपके जूनियर से, आपके सीनियर से सिग्नल नहीं मिल रहा, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, इसका मतलब सिग्नल नहीं मिल रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो नेट चार्जिंग क्या चीज है, मोबाइल मोबाइल से कनेक्ट नहीं है, थ्रू सर्वर। मैं भी आपसे कनेक्ट होना चाहता हूं थ्रू सर्वर, मैं आप सब से कनेक्ट हूं थ्रू सर्वर। बड़े बड़े काम हो जाते हैं थ्रू सर्वर। आप किसी को कमांड देना चाहते, कमांड आप सब कमांड देते हैं, आप एक बार प्यार से कमांड दीजिए, सोचिए वहां तक संदेश गया है, उसको परम शक्ति को संदेश दीजिए और उसके सामने दीजिए, एक्सेप्टेड चार्ज। कुछ समय परमात्मा के साथ चार्ज करें, लगाएं। आपको लेमन वाली एक्सरसाइज कराई, अभी नहीं कराई, नहीं कराई, करा दो, ठीक। तो आप खुश रहेंगे हैं? लेकिन कई बार पोस्ट पद की ईगो खुश नहीं रहने, हमने ये दिमाग में बिठा लिया जो खुश है ना वो शायद जूनियर है। मैं बता रहा हूं, मैं कंपनी में गया कॉर्पोरेट सेक्टर में, मुझे जब अभी नया था, बहुत पहले नया नया ब्रह्मा कुमारी में आया, तो मुझे लगा किसी को शिक्षा देनी है, तो एक बाहर बहुत अच्छा हंस रहा था, बहुत खुश, मैंने सोचा इतना आनंदित, इससे पूछा मैंने कहा जी मैं सीईओ से मिलना है, अभी मैं तो बाहर सिर्फ चपड़ा सीईओ, कोट पैंट डाल के, उनमें पूरे सिविल में बैठते हैं कोट पैंट डाल के बैठ गया, ठीक। अंदर गया दो चार से पूछा कि अभी मैं तो सिर्फ क्लैरिकल में, और अंदर गया मैं तो सिर्फ ये हूं। एक बाद में बोला हेड कौन है, उन्होंने शीशे में देखा वो हेड है, वो ऐसे करके ना चक्कर लगा रहा था। मैं अंदर पूछा जी जी आई एम फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी, क्या काम, उसने ऐसे बोला मैं काम ही भूल गया। घर आके हमारी दीदी को बोला दीदी मैं भगवान से चाहूंगा मुझे चपड़ासी बना दे, कम से कम खुश तो रहूंगा, खुश तो रहूंगा। ऐसी क्या रुतबे जो मेरे अंदर की खुशी अंदर की शांति सब खत्म कर दिया और एक बुत बना के खड़ा करते है खुशी। और अब तो धीरे धीरे लोग खुश होना ही भूल गए हैं, मैं कहीं एक सेशन करा रहा था, कोई हंसी की बात करी, अगली लाइन वाला एक भी नहीं हंसा। अगली लाइन में सोचते ना कौन बैठते हैं आपको मालूम है, अगली लाइन में एक भी नहीं हंसा और लोग ऐसे करके मेरे को सुन रहे थे। मैंने कहा क्यों हंसी नहीं आई? बोला हम सुबह पार्क में हंस के आते हैं। ऑफिसर है भाई, ऑफिसर है, पार्क में हंस के आते हैं। मैं चुप भाई, सब लोग हैं सुबह जाते हैं पार्क में, गिनती से एक दो तीन, फिर एक दो तीन, फिर बोला बस ज्यादा नहीं, और घर आके पूरा दिन जैसे ही हंसी आने लगे फिर ध्यान रहे नहीं पार्क में ही हंसना, यहां नहीं हंसना। ऐसी जिंदगी बना ली हमने।
यहां चांस है आगे कोई भी ऐसा नहीं बैठा।
एक छोटी सी कहानी, फिर एक एक्सरसाइज, टाइम परमिट करे तो। यह सच्ची कहानी बता रहा हूं। आप जैसे किसी ऑफिसर की पोस्टिंग हुई कहीं, बहुत सुंदर क्रॉकरी खरीदी, गिफ्ट दी उन्हें, वो लाके घर में रखी और रिटायर हुए हुए थे, उनका सर्वेंट उसको साफ कर रहा था, उससे वो प्लेट नीचे गिरी, उनको बहुत गुस्सा आया, गुस्से में उनको उसको देखा, बोलने लगे, तभी यहां पेन हुआ, ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने काटा, डॉक्टरों ने पहले पूछा कौन है, उन्होंने कहा बड़ा अफसर है, तो उन्होंने बड़ी कैंची इस्तेमाल करी, काटा, खोला, टांके लगाए, उन्होंने सर बोला, देखो सर बोला, क्या सर टांके कच्चे हैं लोड नहीं लेना, बोलो सारे टांके, अभी भी आप लोड लेके बोल रहे हो, बोलो ना टांके कच्चे हैं। वो ऑफिसर घर आए, घर आके कमरे में बैठे, नौकर से दूसरी प्लेट टूट गई, जैसे टूटी ऑफिसर ने घूर के देखा, तभी याद आया, बोलो लोड नहीं लेना। वो बड़े प्यार से बोले यार देख के तोड़ा कर। उसकी वाइफ बोली यही बात पहले कर लेते तो 14 लाख रुपए तो बच जाते। मैं आपसे पूछने आया हूं, 14 लाख से पहले संभलना है या बाद में चलना है? आपने बसेस के पीछे देखा होगा, हरियाणा में खासकर, पीछे लिखा होता है ये तो नू ही चल लेगी, ये पूरा सिस्टम जहां आप काम कर रहे हैं, ये आपको गलत फहमी है मैं सुधार दूंगा, वो सब नू ही चल लेगा, आप जितने मर्जी हॉर्न बजाते रहो ये सब नू ही चल लेगा, और जब ये सीख लिया तो याद रहेगा। और आखिरी बात, आपके मुख में, आपके चेहरे पे दुनिया सलूट मारती है, कोई बड़ी बात नहीं, आप पीठ करें और लोग तब दिल से सलूट मारें, ये आपकी कमाई है, यही आपकी कमाई है और ये हम सब ने कमाई है, यही चार्जिंग है। ठीक है, तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखना, मेरे को ये टाइम सिंड्रोम हो गया है, मेरे को वहां से स्पेशल बताया गया कि टाइम से खत्म कर देना। क्लियर होगी बात? अब हमारी सोच का असर कैसे पड़ता है, चार्जिंग कैसे पड़ता है? हम मन ही मन कईयों को फांसी दे चुके हैं, कईयों को जान से मार चुके हैं, मन ही मन हमने जब जब घूर के देखा किसी को, अच्छा हुआ भगवान ने हमें ये वरदान नहीं दिया कि जिसको तू घूरेगा वो भस्म हो जाएगा। अब कल्पना करो कि अगर भगवान आपको वरदान दे दे जिसको घूरेगा भस्म हो जाएगा, तो पत्नियां जैसे ही बॉस, ऑफिस का बॉस, घर का बॉस नहीं, आपकी गलत फहमी है, जैसे ही घर आया और उसने कुछ बोला, पत्नी ने घूर के देखा, भस्म, इसलिए उसे पता बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और तो और आपको इतने गुस्से से देखने की आदत है, किसी दिन शीशे में खुद को देखा तो लोग कहेंगे बहुत अच्छे थे साहब, काहे गुस्सा करते हो। कल्पना, अब गुस्से मन ही मन डांट रहे हैं। मैं आप चीज बताता हूं आपको, मैं जो बताता हूं ना, कोई रेड लाइट नहीं करना, ऐसे ही आंखें खोल खोल के, क्योंकि जितनी भी टेंशन जितना भी गुस्सा करते हो ना, आप बैठ के आधे घंटे कार में बैठ के ऐसे ऐसे करके फिर मैं जाऊंगा, फिर उसको मारूंगा, फिर उसको बताऊंगा। हम तो राजयोगी उतने अटेंटिव नहीं है, हमारा ध्यान फिर भी टूट जाता है, लेकिन आप पूरी बस में झटके भी लग रहे हैं और सारा कुछ हॉर्न भी बज रहा है, आपका जो अर्दली है उसका जो ऑपरेटर है उसके वो वायरलेस भी बज रहा है, उसके बाद आप अपने ध्यान में मगन है, मैं वहां जाऊंगा फिर उसको ऐसा करूंगा। अंदर खूब बज रहा है, खूब बज रहा है, खूब बज रहा है, और आपने दो चार को मार डाला, दो चार को डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया, घर में बच्चों को थप्पड़ मार दिया, और जैसे ही घर पहुंचे बच्चा बोला क्या हुआ, कुछ नहीं, बैठ गए, एक घंटा यहां दिक्कत कर ली। ठीक है, अब मैं वही कहता हूं, अभी आप घर यहां से उठिए, चप्पल डाली हुई है ना, चप्पल डाल के सीधा ऐसे, अभी उठना नहीं है, मन से ही जाइए जहां पर आपको निवास मिला हुआ है वहां जाइए, और जहां जहां निवास है ना वहां पीछे कैंटीन है, मतलब मैस है छोटी सी, हमारी आध्यात्मिक भाषा में उसे भंडारा बोलते हैं, या इधर ही भंडारे में चले जाइए, वहां एक नींबू उठाइए, लेमन लीजिए, उसे स्लैब पर रखिए, चाकू लीजिए, चाकू से काटिए। आपने चाकू से स्लैब उसे नींबू को काटा, नींबू आधा आपके हाथ में, थोड़ा सा दबाएंगे उसके बीज हैं उसमें, चाकू की नोक से बीज का एक एक नोक उसका आधे निकाल के बाहर रख दीजिए, बाहर नमक है थोड़ा सा नमक डालिए और नींबू को दबाइए, उसका रस बाहर आ रहा है और नमक डूब रहा है। आप पास में लाइए, मुख खोलिए, थोड़ा सा बाहर निकालिए, जीभ बाहर निकालिए और नींबू को थोड़ा सा दबाइए, जीभ पर आने दीजिए, और नींबू को जीभ पर रखकर थोड़ा सा रगड़ दीजिए, नींबू बाहर निकालिए, रख दीजिए। अब मुझे बताइए किस किस के मुंह में पानी आया, हाथ खड़ा करते हैं, हाथ खड़ा करें, आप पीछे मुड़ के देखें, देखें जिन जिन के मुंह में पानी आया वो मेडिटेशन कर रहे थे, बाकी मुझे घूर के देख रहे थे, ना नींबू है, और कई लोग कह रहे थे नींबू और मैं काटूंगा, मेरे को तो कटा कटाया नींबू मिलता, समझ आया, नींबू है नहीं है, आपके मुख में पानी आ गया केवल सोचने में। तो आप जो सोचेंगे उससे आपने शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक कर सकते हैं, केमिकल बैलेंस को दोबारा से कर सकते हैं, फिर यहां से रिजनेट होकर रिश्तों को संभाल सकते हैं और पूरे संसार को बदल सकते हैं। भारत इस चीज का गवाह है, लोगों ने संकल्प से विवेकानंद, असंभव से असंभव कार संभव कर डाले केवल विचार की शक्ति से, और आप हम सब ने विचारों को ही सबसे सस्ता मानकर बेकार कर डाला। वैल्यू योर थॉट्स, यूं ही पैदा होके गुम ना जाए, थॉट्स आपकी मर्जी के बिना पैदा ना हो जाए, इतनी पावर हो, आई एम पीसफुल। आप देखें, मैं अभी पॉजिटिव थॉट्स की बात करूं और मैं चला जाऊं, आप बोलोगे मैं बिल्कुल ठीक हूं, दो लाइन के बाद आपको समझ नहीं आ रहा करना क्या है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स की कड़ी नहीं आती, लेकिन नेगेटिव थॉट्स की टक 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 टक, एक्सपर्ट पीएचडी हो गए हैं उसमें हम, ठीक है ना। तो क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स, शुरू शुरू में पॉजिटिव थॉट्स, आपको ऐसा ही फील होगा जैसे कोरोना काल में किसी को हवा की दिक्कत होती है ना, अभी हम सांस ले रहे हैं हमें पता भी नहीं है कि वी आर ब्रीदिंग, लेकिन अगर सांस की दिक्कत हो तो वी आर पुट ऑन वेंटिलेटर। वेंटिलेटर मीन फोर्सिबली आर्टिफिशियल तरीके से हमें सांस दिया जा रहा है और लिया जा रहा है, ऐसे ही यहां जब आप आए हैं तो आर्टिफिशियल तरीके से आपको सांस दिलवाया जा रहा है, आई एम पीसफुल। पांच मिनट में सांस उखड़ता है, फिर कहते हैं नहीं पीसफुल नहीं हूं मैं, तो बहुत गुस्सा आता है मुझे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, कहां भाग्यशाली हूं, फिर वो सांस उखड़ता है, वो डॉक्टर भाग के आता है ऐसे, अरे फिर उसे कहता है नहीं नहीं आपने सोचना है, मैं भाग्यशाली हूं, मैं भाग्यशाली हूं, भाग्यशाली। मैं सच कहता हूं, आपकी किस्मत अच्छी है तो क्या बड़ी बात है दुनिया कहेगी। आपकी किस्मत अच्छी नहीं और कहो मेरी किस्मत अच्छी है। अरे कुत्ते को भी रोज लात मारो तो वो भी आना बंद कर देता है यार। यहां तो किस्मत को रोज कोस रहे हो, वो नहीं आना बंद कर देगी क्या आपके पास? हर बार पुकारो मेरी किस्मत सबसे अच्छी, मेरा परिवार सबसे अच्छा, मेरी जिंदगी सबसे अच्छी। और मैं तो सबसे, हमारे यहां पिता को बाबा शब्द बोलते हैं, पिता बाबा, मेरा ये परिवार सबसे अच्छा। दिस इज मेडिटेशन। अब ये वेंटिलेशन पर है तो आपको बार बार रटाया जा रहा है मैं आत्मा हूं, मेमोरी लॉस केस है, हम सब भूल गए हैं मैं कौन हूं। जैसे अल्जाइमर नहीं हो जाता, बार बार याद दिलाते हैं, पटके भी लिख देते हैं, तू राम सिंह श्याम सिंह का बेटा, ये तो हम रट रहे हैं, रट रहे हैं। फिर मैं आत्मा हूं, फिर भूल गए ना, मैं तो वो हूं। फिर कोई आता, अरे नहीं तू वो नहीं है, तू वो है। अच्छा मैं आत्मा हूं। अगर ये थोड़ी सी बार बार रिमेम्बरिंग आ जाए, देखो आप कहो मैं सोल हूं, मैं शांत हूं, सामने वाला भी प्यार, तो आपका चेहरा ऐसे है, ऐसे नहीं, ठीक है। लास्ट का एक मिनट का एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आपने करी है वो वाली सिक्का वाली एक्सरसाइज है, करी है ना? वो याद रखना, कुछ भी हो जाए ऐसे नहीं करी ना? हाँ, कईयों ने नहीं करी, जिन्होंने नहीं की हाथ उठाए, और जिन्होंने की है, गिरीश भाई ने कराई थी ना? हाँ ठीक, हाँ तो आप खुश रहना, कुछ भी हो जाए ऐसे। सांस लेना सीखे, अभी भी यहां से निकले, आपने अभी भी दुख होने के ठेके लिए हुए हैं। मान लो आप आगे की कुर्सी पे बैठे और इतनी देर में कोई कान में आके बोले आप थोड़ा उठ के पीछे वाली कुर्सी में चले जाइए, गया मेडिटेशन एक तरफ, सब खत्म, 3 दिन की क्लासे सब खत्म। तमीज ही नहीं है, नहीं बुला लिया मुझे, मेरा पद ही नहीं जानते, इतने अवार्ड लिए हुए हैं, आगे से भी हटा दिया, आना ही नहीं यहां, मेरा ही दिमाग खराब था जो यहां आ गया, पीछे पड़ा। ये कितने थॉट्स ये क्रिएट कर रहे हैं, और आपको अच्छे थॉट्स क्रिएट करवा रहा हूं मैं पीसफुल हैप्पीनेस उसमें मास्टर है, दुखी होने के मास्टर हैं। इतनी लंबी सीरीज बनती है आधा घंटा, और आंखें खोल के कर रहे हैं, और अच्छा पीछे से कितने धक्का दे दिया तब भी हम कर रहे हैं। मेरा कर, चलो 60 साल के बाद आपका म्यूट बटन भी खराब हो जाएगा, फिर लोगों को भी सुनाई देने लग जाएगा, घर वाले बोलेंगे बड़बड़ा रहा है, अभी तो म्यूट बटन में हो, किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, चार्ज करो, ठीक है, और रीचार्ज मतलब हम पहले चार्ज थे अब नहीं है, ठीक है। खुश रहो, खुश करो मत, और हर एक को प्यार से देखो। सेंस आई हैव ज्वाइंट दिस इंस्टीट्यूशन, मैंने आज तक किसी का नंबर नहीं लिया, सबको नंबर दे के आया हूं, कभी नहीं सोचा ये व्यक्ति मेरे काम आ जाएगा। अरे आपकी फोर्स का जहां भी आप ऑफिसर है तो मोस्ट आपका चाचा हो, आपका रुतबा बदल जाता है, कोई काम हो तो मुझे बताना, ट्रांसफर करा दूंगा, पोस्टिंग दिला दूंगा। अरे वो मेरा बाप, वो मेरा, मैं तो हंस के बोलता था, मेरी तो अप्रोच इतनी है, अगर उसे कह दिया ना तो कहीं यहां से वहां ट्रांसफर ना हो जाए, इतना नशे में रहता था मैं। नहीं तो ये नशा हो, हु इज विद मी, मैं किसका हूं। मैं शुरू से कहता हूं आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, सबसे अमीर व्यक्ति हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ भी खो जाए, मैं यहां से घर जा रहा हूं और रास्ते में मेरी टांग कट जाए, एक क्या दोनों कट जाए, तब भी मैं कहूंगा आई एम हैप्पी। अगर याद, अगर आवाज आती है यस, तो मेरे से बड़ा हैप्पीनेस, खुश कोई नहीं है। यहां इतनी सी चीज घूमती है और आप चीज उठा के फेंक के मारते हो, नहीं हाँ तो तभी खुश रहना है, ठीक है। ओम शांति। तो चलते फिरते अब पूरे दो दिन में योग करना है। कोई भी दिखे, कोई अच्छा मान लो यहां कोई गुस्से वाला भी दिख जाए तो अरे यहां भी ऐसा होता है, फिर मेडिटेशन उसे कहना तू भी शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। जैसे लोग बद्दुआ देते ना, मर जा तेरा कुछ ना बचे, देते रहते ना ऐसे बोल, शांत हो जा, खुश। एम्बुलेंस जा रही हो, बच जा, बच जा। क्या जा रहा है तुम्हारा? यही चार्जिंग है, यही चार्जिंग। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर सेशन। चाय से पहले थोड़ा सा जब बिस्किट चाहिए तो वो यहीं पे मिल गया है आप लोगों के लिए, सामने चाय है। तो एक हिंदी में एक शब्द है अकड़, जिसमें कोई मात्रा नहीं है परंतु हर मनुष्य के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर होती है। तो वही छुड़ाने के लिए ये हमारी सारी प्रयास है। और सच मानिए कि मंच पर बैठे हुए ये सारे भक्त, पीछे सारे आयोजक, कि कोई भी आपकी जिंदगी को बदल नहीं सकता, अगर कोई बदल सकता है तो आप स्वयं। वो दृष्टि, वो दर्पण देने के लिए परमात्मा ने आप सभी को वहां पर निमित्त बनाया है। और सच में हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, अपने इतने कारोबार में बैठे हुए, इतनी पजल लाइफ में से हम लोग यहां से निकल के आए हैं, तो यहां पर थोड़ी सी ठंडी छांव मिल रही है ना, सबको मिल रही है ठंडी छांव। तो आपकी मुस्कुराहट ये बताती है, बढ़ जाती है खूबसूरती 100 गुना मुस्कुराने से, फिर भी हम बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। बस मौका मिल जाए मुंह फुला लेते हैं। तो ये जो आदत हो गई, ये मसल्स हमारे जो अकड़ गए हैं, उस अकड़न को और जकड़न को तोड़ने के लिए हमारे संजीव भाई जी ने बड़ा संजीवनी मंत्र दिया, मुस्कुराते रहो। तो जोरदार तालियों के साथ संजीव भाई का। और अक्सर करके बहुत किसी ने बहुत अच्छा कहा है, सादगी थी, सच्चाई थी, बंदगी थी, जब ये व्हाट्सएप और ट्विटर नहीं था तो जिंदगी थी। तो अभी आप 2 दिन से बिना व्हाट्सएप ट्विटर से जिंदगी को पनपने का मौका दे रहे हैं। उस दिन आपका जन्म नहीं होता जिस दिन आपका मां के गर्भ से जन्म हुआ था, वो आपका बायोलॉजिकल एज होता है परंतु वो आधार कार्ड में लिखा हुआ है। परंतु सही मायने में जिस दिन आपने स्वयं को जानने का प्रयास किया और जिस दिन सही मायने में निस्वार्थ अनकंडीशनल मुस्कुराना सीखे, उस दिन मानिए थोड़ा सा आपका जन्म हुआ है। तो आपका आज 2 दिन में जन्म हुआ है, इसलिए हैप्पी बर्थडे, सबको हैप्पी बर्थडे सर। और छोटे बच्चे अक्सर चाय नहीं पीते, फिर भी आपके लिए व्यवस्था की गई है। चाय मुस्कान का कारण नहीं होना चाहिए, मुस्कान तो ऐसी अनकंडीशनल है, चाय मिले या ना मिले। तो ऐसी तालियों के साथ हम लोग शुक्रिया करेंगे परमात्मा का। और एक छोटा सा ब्रेक आप सभी के लिए, ये ब्रेक नहीं है कनेक्शन है। चलिए ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। नमाज शाम का वक्त हो चला है, पूरी दिन भर की दौड़ भाग और थकान के बाद जब हम शाम को थोड़ा सा सुकून महसूस करते हैं तो अक्सर करके मंदिर में दिए जलते हैं, अजान पढ़े जाते हैं, गॉड को याद किया जाता है। तो वही नमाज शाम की बेला में आज हम उस परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय समझेंगे। क्योंकि दीदी हमारे साथ रूबरू हो चुकी हैं तो उनका परिचय ये है कि IPS और ये प्रैक्टिकल रिफ्लेक्ट होता है, केवल पीसफुल भी नहीं एक चीयरफुल सोल भी है, सदा मुस्कुराते हुए हर चीज को बड़े प्यार से समझाते हैं। नहीं तो हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना तो उलझन में आ जाते हैं। कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, बचपन की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहां हम समझदारी की इस उलझन में उलझ सा गए हैं, हमारा बचपन कितना प्यारा था। शरीर भले बड़े हो चुका है परंतु आत्मा अपने आप में एक बहुत छोटा बच्चा है, अभी भी वो नादान है, अभी उसे प्यार चाहिए, अभी भी वो परमात्मा को कहीं ना कहीं ढूंढता है। जब हम अकेले हो जाते हैं, जब किसी का साथ नहीं होता, जब कोई सहारा नहीं दिखता तो वही दिखाई देता है। तो वो परम सहारा का सत्य परिचय समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई से प्यार से स्वीकार करते हुए हर भाव को अगर हम सुनेंगे तो आने वाले जो 45 मिनट्स है हम उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो दीदी जी का एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। स्वागत इसीलिए नहीं है कि वो कोई हमारे सामने डायलॉग रखेंगे प्रस्तुत करेंगे, स्वागत इसीलिए कि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं सुनने के लिए। ट्रेनिंग का सही मतलब होता है जब मैं अपने आप से बात करता हूं, अर्थात मैं अपने आप को ट्रेनिंग देता हूं। तो परमात्मा से जब बात करेंगे तो सुपर ट्रेनिंग हो जाएगा। तो हम परमात्मा की सुंदर मेडिटेशन के साथ प्रारंभ करेंगे। अभी 2 मिनट बहुत सुंदर कॉमेंट्री के साथ ये सेशन का प्रारंभ करेंगे। सो ओम शांति।
ओम शांति। आपने आज सारा दिन ही बहुत सारी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सुनी है, थोड़ा ओवरडोज भी होता होगा क्योंकि बहुत समय से ऐसे कभी संगठित रूप में और वो भी एक साथ इतनी सारी बातें हमने नहीं सुनी है। नहीं, थोड़ा लगेगा आपको ओवरडोज, लेकिन आप बहुत बिजी रहते हैं ना, फिर आप टाइम हमें नहीं दे पाएंगे तो आपके डेली शेड्यूल में आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत मुश्किल से आप ये समय निकाल कर आए हैं, तो हम सबके बहुत सारे अनुभव हैं जो हमें आपके साथ शेयर करना है, इसलिए बहुत सारी बातें एक साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन जरूर आप वापस जब जाएंगे तो ये एक एक बात आप जरूर इसका चिंतन करेंगे, अनुभव करेंगे, और जैसे जैसे आप सुनते जा रहे हैं उसमें से कुछ बातें शायद आपके साथ रह जाएगी, कुछ में आपको थोड़े प्रश्न भी होंगे, ये नॉर्मल है, क्योंकि जो चीजें हमने अब तक सुनाई नहीं वो सडनली वो सब बातें सुनेंगे तो कैसे हम उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उन पर चिंतन जरूर करना, उसको जरूर एक्सप्लोर करना, उसको जरूर एक्सपीरियंस करना। और ऐसा ही एक बहुत इम्पोर्टेंट, हम कॉन्सेप्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन एक्सपीरियंस है परमात्मा के परिचय का। वैसे हम देखते हैं कि जहाँ आत्मा की बात आती है, सुबह हमने स्व के बारे में देखा, तो इसके बारे में हम कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति इससे थोड़ा अवगत है, थोड़ा इसकी अंडरस्टैंडिंग है, हमने कहीं ना कहीं स्वीकार किया हुआ है कि ये शरीर को चलाने वाली कोई एक आध्यात्मिक शक्ति है। और शायद हमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया जो हम अभी मेडिटेशन के द्वारा, चिंतन के द्वारा अनुभव कर रहे हैं कि ये शरीर को चलाने वाली मैं एक आध्यात्मिक शक्ति हूँ, उसका अंतर और अनुभव शायद अभी हम कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमने इसको देखा है, एक्सपीरियंस किया है। लेकिन परमात्मा का परिचय जो है उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं विचारों में बहुत सारे अंतर है। हर एक फिलॉसफी में, हर एक धर्म में आत्मा के बारे में कोई विचारों में बहुत अंतर नहीं है, परमात्मा के परिचय में जरूर है। इसलिए हम देखते हैं कि इसको और स्पष्ट रूप से समझना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो हम देखते हैं कि परमात्मा को हमने कहा ही है कि वह सत्य है, ट्रुथ है, और सत्य हमेशा एक होता है। नहीं, इस समय सत्य है कि आप यहाँ हमारे साथ हैं, तो कोई रूप से उनको लगा कि आप वापस अपने पोस्टिंग में हैं या कहीं और हैं, तो वो अनेक असत्य हो सकते, सत्य एक होता है। तो परमात्मा अगर सत्य है तो उनका एक सत्य परिचय भी जरूर है, उनको प्यार से जरूर हम अपने अपने अनुभव से याद करते हैं, लेकिन उनका अपना सत्य परिचय जरूर है। और परमात्मा का सत्य परिचय क्या है वो कौन बेहतर समझा सकते हैं, कौन सबसे बेस्ट समझा सकते हैं, वो स्वयं, क्योंकि हम भी अपना ही 100% परिचय समझा सकते हैं, और कोई तो हमारे बारे में थोड़ा थोड़ा जो अनुभव है वो कह सकते, बट पूरा स्पष्ट सत्य क्या है वो हम ही खुद अपने बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ परमात्मा ने ही स्वयं आकर हमें अपना परिचय दिया है, और परिचय के साथ साथ हमें बहुत प्यार से वो विधि सिखाई है जिससे हम अपने मन और बुद्धि को उनके साथ सदा ही जुड़ा हुआ रखें। अब हम देखते हैं कि अपनी जीवन यात्रा में, जो हमारे इस शरीर से जुड़ी हुई जीवन यात्रा है, इसमें हमारा बहुत समीप संबंध हमारे माता पिता से रहा है, और हमने जब से जन्म लिया है हमारे माता पिता की याद आज भी हमारे लिए बहुत चेरिश करते हैं, वो मेमोरीज और वो याद सहज है। तो हम में से जो भी यहाँ बैठे हैं कोई भी ये तो नहीं सोचेगा कि मुझे अपने माता पिता को याद करना मुश्किल है। नहीं, माता पिता शब्द कहा ही और आपके सामने उनकी सूरत भी आ जाती है, उनका स्वरूप आ जाता है, उन्होंने हमें जो पालना दी है, प्यार दी है, परवरिश की है, वो सम्मुख महसूस होता है और वो प्यार से हम उनको याद करते हैं। कहा जाता है कि छोटा बच्चा भी, नहीं बहुत छोटा होता है, लेकिन वह भी क्या करता है, वह भी अपने माता पिता को बहुत प्यार से याद करता है। नहीं, आप देखेंगे कि उनकी याद में वो रहता है। तो हम देखते, छोटा सा बच्चा है, आपकी माँ की गोद में है, पिता की गोद में है, तो कितना निश्चिंत होता है। लेकिन उस छोटे से बच्चे को अगर आप थोड़ा स्ट्रेंजर के पास दे दें तो अनसेटल्ड हो जाता है, नहीं, और थोड़ा सा रोना भी शुरू कर देता है। तो वो बच्चा जो है उसके ऑर्गन्स तो कितने छोटे हैं, अभी तक वो एक्सप्रेस तो नहीं कर सकता है, लेकिन माता पिता की याद गहरी है, वो कनेक्शन जो है बहुत गहरा है, और वो अपने रूप से अपने माता पिता को प्यार से याद कर रहा है। तो वो छोटे बच्चे को किसने ट्रेन किया माता पिता को याद करने के लिए, किसने ट्रेन किया? तो वास्तव में हमें अपने मन बुद्धि को ईश्वर को याद करने के लिए कोई ट्रेनिंग या समझ या शिक्षा तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गहरा संबंध है ना, आत्मा का सबसे गहरा संबंध अपने माता पिता से। लेकिन क्योंकि हमने अपने आप को सिर्फ इस बाह्य अस्तित्व के आधार से ही देखा समझा और उसी के आधार से हम चले, इसलिए हमने ये आंतरिक हमारा जो व्यक्तित्व है उसको भूल गए, और इसके वजह से इसके साथ जुड़े हुए जो समीप संबंध है, सबसे समीप हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट का, हमारे परमात्मा के साथ जो हमारे माता पिता हैं, वो संबंध को भी हमने अनुभव नहीं किया। गायन जरूर किया, नहीं, भक्ति में हमने गाया जरूर है कि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु त्वमेव, हर संबंध का गायन किया है, और वो गायन करते करते भी हमने सुख का अनुभव किया, ऐसा है ना, हमने हर बार जिस भी भाषा में जिस भी धर्म के भाव से जिस भी फिलॉसफी में हमने ईश्वर को याद किया है, तो वो शब्दों के उच्चारण के साथ साथ भी हमारी जो फीलिंग्स है उससे हमें बहुत सुख मिला है। लेकिन जब हम उस संबंध को अनुभव करेंगे तो आप सोचिए उसमें जो सुख है, उसमें जो प्राप्ति है वो कितनी गहरी होगी। और हम देखते हैं कि परमात्मा इसलिए बहुत प्यार से स्वयं ही आकर अपना परिचय देता है, हमें अपना परिचय भी देता है, अपने आत्मिक स्वरूप का परिचय और फिर खुद का परिचय। तो आज तक हमने ईश्वर को किस रूप से समझा है? हमारा प्यार और भावनाएं उनके लिए हमेशा ऊंची रही है। तो एक कॉन्सेप्ट है जहां हमने समझा कि परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह तू ही तू, नहीं सुना है ना कॉन्सेप्ट के बारे में, कि जहां देखें ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है। तो ये एक भावना के रूप से तो हम समझ सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के प्रति हमारी एक निरंतर याद की भावनाओं की वजह से हम उसको हर जगह महसूस करते हैं। लेकिन अगर तथ्य के रूप में देखें, फैक्ट के रूप में देखें, तो आज चारों तरफ जो हम देख रहे हैं वहां परमात्मा को तो हम नहीं महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज जो आत्मा की जो कमजोरियां हैं, जो नकारात्मकता है, जो शुद्धियां हैं, उसको हम देख रहे हैं। दूसरा हम कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि परमात्मा के लिए समझा गया है कि परमात्मा हमारे अंदर में निवास करते हैं। तो ईश्वर हमारे अंदर है, सामने वाले व्यक्ति को भी हम देखते हैं तो हम समझते हैं ईश्वर उनके अंदर भी निवास करते हैं। तो ये भी एक बहुत ऊंची भावनाएं हैं, लेकिन फिर हम समझते हैं कि हम हरेक के अंदर, जो ज्ञान के आधार से हम देखते हैं कि हमारे हरेक के अंदर आत्मा है, और आत्मा में परमात्मा के गुण है, वर्षा दिया हुआ इनहेरिटेंस है, तो वो गुण और शक्तियां हैं। तो जब हम आत्मा उन सातों गुण को अनुभव करते, मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, ये गुणों को हम अनुभव कर रहे हैं, और वो अनुभूति 100% है, बाकी सब प्रकार की थॉट्स और फीलिंग्स को वो ओवरपावर कर लेती है। तो उस अनुभूति में हमारे अंदर परमात्मा के गुण दिखाई देते हैं, विशेषताएं दिखाई देती हैं, इसलिए हमने समझ लिया कि हमारे अंदर भी ईश्वर है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी ईश्वर है। लेकिन अगर ईश्वर है तो वो तो एक परम शक्ति है, नहीं तो वो है ही सब जगह हमारे अंदर, तो फिर हम उसको पुकारेंगे नहीं। आप सभी यहाँ बैठे हैं, आप में से कोई जिनको मैं जानती हूँ, जैसे भाई को मैं जानती हूँ, तो मैं बार बार उनको पुकारूंगी कि अरे आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो पुकारना नहीं होगा ना, क्योंकि वो सामने बैठे हैं। तो जो यहाँ मौजूद है उसको हम बुलाएंगे नहीं, तो जो हर जगह है हमारे अंदर है उसको बुलाने का भाव नहीं होगा। लेकिन आज अगर हम देखें हर एक के दिल में ईश्वर के प्रति ये भाव है, आओ हमें शक्ति दो, हमें समझ दो, हमें दिशा दो, पुकार रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को भी हम और गहराई से समझेंगे कि हमारे अंदर आत्मा है जो परमात्मा की संतान है और जिसके अंदर परमात्मा ने हरेक अपने गुण और शक्ति को इनहेरिटेंस के रूप में, वर्से के रूप में प्रदान किया है। इसलिए हम हर गुण का स्वरूप है ओरिजिनल रूप में। फिर हम देखते हैं कि कई समझते हैं प्रकृति ईश्वर है, तो प्रकृति में भी अगर आप देखें, क्योंकि आप तो बहुत समीप भी रहते हैं प्रकृति से बहुत स्थानों पर, तो प्रकृति का स्वभाव क्या है, प्रकृति की विशेषता क्या है जी? चेंज होती है और देती है, देने का भाव है, सूर्य है। फिर हम प्रकृति ट्रीज को हम देख रहे हैं, हम ऑक्सीजन को देख रहे हैं, तो ये सब चीजें प्रकृति क्या हमें दे रही है, कितना वैल्यूबल है ये सब चीजें। लेकिन हम देखते हैं कि वो देने का जो भाव है, और वो भी कैसे, अनकंडीशनली हर एक को दे रही है, निस्वार्थ प्यार से दे रही है। तो उनमें जो शीतलता है प्रकृति में, जो देने का भाव है, जो गुण है दातापन के, वो हमें ईश्वर की याद दिलाते हैं। तो इसलिए हमने कहीं ना कहीं उनमें भी वो गुण और शक्तियां देखकर ईश्वर की याद हमने की है, इसलिए हमने प्रकृति को भी परमेश्वर कहा। अब हम देखते हैं कि कई हैं जिन्होंने अपने धर्म के आधार से, जो हमारे धर्म पिता है, जिन्होंने हमें दिशा दी अपने धर्म में, जिन्होंने हमें प्रगति के मार्ग पर आगे लेके गए हैं, और जिस धर्म के आधार से हम प्रगति भी कर रहे हैं, उसको भी हम ईश्वर के रूप में देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे हर एक धर्म पिता ने बहुत प्यार से और अपने अनुभव से हमें उस एक पिता के तरफ दिशा दी है, है ना? हर एक धर्म पिता हमें क्या याद कराते हैं, उस एक परमात्मा को याद करो, उसके बारे में भी हम गहराई से देखेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि वास्तव में जो आज तक हमने समझा उसमें हमारी भावनाएं 100% ट्रू रही, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि हम स्वयं को भी नहीं जानते थे, इसलिए परमात्मा के कॉन्सेप्ट के रूप में हमें क्लैरिटी नहीं थी। और ये संबंध इतना समीप है कि इसको जानना तो बहुत आवश्यक है। जैसे हमें अपने इस शरीर की जीवन यात्रा में अपने माता पिता को जानना, ये तो बहुत आवश्यक है और वो तो नेचुरल है। उसी रूप से अगर हम ये स्मृति रखते हैं कि हम आत्मा हैं और ये गुण और शक्तियों को अनुभव कर रहे हैं, तो अपने पिता परमात्मा को का परिचय जानना, उसके साथ संबंध जोड़ना, ये तो बहुत नेचुरल है। तो उसके बारे में थोड़ा गहराई से, जैसे हमने देखा कि अलग अलग रूप से हमने उसको याद किया, तो हमारे हर एक धर्म में विधि जो हमने अपनाई उसमें भिन्नता थी, लेकिन विधि भिन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं हर एक धर्म पिता ने हमें उस एक ईश्वर के तरफ, गॉड के तरफ, अल्लाह के तरफ, भाई गुरु के तरफ इशारा किया। और इसलिए दिल ही दिल में हम महसूस करते हैं कि हम सभी उस एक पिता को याद कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हम जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो हम समझते हैं कि हम सभी आपस में मनुष्य आत्माएं हैं, अलग अलग रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक संगठित रूप में एक परिवार है। तो मनुष्य आत्माएं अनेक है। फिर हम देखते हैं कि देवी देवताओं को भी हम याद करते हैं, डेटीज को, देवी देवताएं भी अनेक है। महान आत्माओं को हम याद करते हैं जिन्होंने महान कार्य किया है, तो महान आत्माएं भी अनेक है। श्रेष्ठ आत्माओं को याद करते हैं जिन्होंने कोई श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त की है, श्रेष्ठ आत्माएं भी अनेक है। धर्मात्माओं को हम याद करते हैं जिन्होंने धर्म के कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है, दिशा दी है, संदेश दिया है, तो धर्मात्माएं भी अनेक है। पुण्य आत्माएं भी हमने देखा जिन्होंने बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपी के आधार से पुण्य कर्म किए हैं, समाज के प्रति योगदान दिया है, तो पुण्य आत्माएं भी अनेक। परमात्मा एक, परम शब्द नहीं, आपके पुरस्कार में भी परमवीर चक्र शब्द आता है, तो परम शब्द का अर्थ क्या है, सुप्रीम, तो सुप्रीम माना एक ही हो सकता है। तो परम आत्मा एक है, अब उसे हमने परम आत्मा कहा, हम सब तो आत्माएं है ही, लेकिन वो परम आत्मा है। तो उस आत्मा में कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण उसको हमने परम आत्मा कहा, उनके रोल में, उनके कार्य में, उनकी जिम्मेवारियों में क्या विशेष है जिसके वजह से हम मनुष्य आत्माएं वो परमात्मा, तो उसमें हम कुछ बातें देखेंगे। परमात्मा को हमने परमात्मा कुछ विशेष कारणों से कहा। पहली बात, परमात्मा जो है वो सर्वोच्च है, सर्वोच्च अर्थात सबसे ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा, हाईएस्ट ऑफ ऑल। दूसरा है नोअर ऑफ ऑल। हम देखते हैं कि कभी हम मूंछ भी जाते हैं कोई चीजों में, डेली लैंग्वेज में हम कई बार कहते हैं ना भगवान जाने, गॉड नोस कह देते हैं, तो उनकी पास की में आई डोंट नो गॉड नोस नहीं, तो हम ये बार बार क्यों उच्चारण करते हैं कि भगवान जाने गॉड नोस, वो क्यों सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला, उसके बारे में हम देखेंगे। तीसरा बियॉन्ड ऑल, सर्वोपरि, सर्व कर्म बंधनों से परे। तो हम देखते हैं कि आत्मा तो कई कर्म बंधनों में आती है, परमात्मा को हम कहते हैं लिबरेटर, गाइड। जब भी हम कोई बंधन में कंफ्यूजन में है तो हम उसको पुकारते हैं कि हमें गाइड कीजिए, हमें दिशा दीजिए। सोर्स ऑफ ऑल, आत्मा के लिए वो सर्वस्रोत है, आत्मा को जो गुण शक्ति अनुभूति प्रेरणा की आवश्यकता है वो स्रोत है, सोर्स ऑफ ऑल। और पांचवी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक्सेप्टेड बाय ऑल, नहीं परिवार है ना, तो जैसे अभी तो हमारे बहुत छोटे परिवार होते हैं, दो बच्चे तीन बच्चे, लेकिन पहले में हम देखते हैं कि हमारे बहुत बड़े बड़े सुंदर संगठित रूप में परिवार थे, तो वो सारे बच्चे भी हम देखते हैं हमेशा उनका यही भाव था ना कि यही माता पिता है, उसमें कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता है। तो ये सारे विश्व की आत्माएं एक मत पर आए कि यही हमारे माता पिता है, तो उसके चिन्ह हर एक धर्म में कौन से हैं जहां एक परमात्मा पिता को हमने याद किया है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो परमात्मा के लिए कहा कि सर्वोच्च है, हाईएस्ट ऑफ ऑल, तो उसका नाम भी ऊंचा, उसका काम भी ऊंचा, उसका धाम भी ऊंचा। अब नाम ऊंचा अर्थात महिमा ऊंची, whenever we sing his praise we always compare him to the ocean। क्यों हम उनको सागर से अंतर करते हैं, उपमा करते हैं? कोई व्यक्ति के लिए कहेंगे ये बड़ा शांत है, ये बड़ा ऑनेस्ट व्यक्ति है, नहीं ये इसमें बहुत दृढ़ता है। परमात्मा के लिए कहेंगे शांति का सागर है, नहीं? प्यार का सागर है, सत्यता का सागर है, शक्तियों का सागर है। तो हम सागर क्यों कहते हैं, सागर की विशेषता क्या है? वास्ट है और बेहद है, सबको समाने वाला, अनलिमिटेड है, सदा काल के लिए। उसमें जो पानी या जो भी हम स्वरूप देखते हैं, गुणों में देखते हैं, वो हमेशा अनलिमिटेड है। जो गुण शक्ति हमें आवश्यक हो हम उनसे ले सकते हैं। मनुष्य आत्मा में गुण है, लेकिन शायद कोई ऐसे जीवन की परिस्थिति में वो पहुंचता है जहां उस समय वो उस गुण को नहीं एक्सप्रेस कर पाता है। वो शांत स्वरूप जरूर है, लेकिन कभी वो परेशान हो जाता है, कभी कोई बात उसको थोड़ा स्ट्रेस में ले आती है, लेकिन ज्यादा करके वो शांत रहता है। तो इसलिए शांति का सागर नहीं कहला सकते, सदा काल, सदा के लिए, इटर्नल, अनलिमिटेड। परमात्मा हर गुण और शक्ति में सागर के समान है, इसलिए हमें जो गुण और शक्ति की आवश्यकता है हम उनसे वो अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो सागर स्वरूप में है, बेहद स्वरूप में उस गुण के। दूसरी बात, उसका अगर नाम ऊंचा है तो उसका काम भी ऊंचा है। तो मनुष्य के लिए तो हम कई बार देखते हैं कि नाम में तो बहुत ऊंचाई है, लेकिन कार्य में हमेशा सिमिलैरिटी नहीं होती है। किसी का नाम कहीं ना कहीं विजय भाई है, लेकिन वो स्वयं अपने जीवन में अपने आप को लूजर समझता है, उमंग उत्साह कम हो जाता है, लो फील करता है, विजयी नहीं अनुभव करता है हमेशा। बहन का नाम शांति है, लेकिन फिर ऊपर नीचे स्थिति कभी कभी हो जाती है। तो नाम के साथ कर्तव्य हमेशा जुड़ा हुआ मनुष्य जीवन में नहीं है। परमात्मा का नाम और कार्य हमेशा ऊंचा है। हर कर्तव्य में हम देखते हैं बहुत ऊंचाई है। सबसे महत्वपूर्ण उनके कर्तव्य कौन से हैं जो हमें व्यक्तिगत रूप में अनुभव होते हैं, पर्सनली आपको क्या लगता है कि कौन सा उनका रोल है जो आपको पर्सनली अनुभव होता है या आपके लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट आप फील करते, जिसके आधार से आप उनको याद करते, कौन सा कर्तव्य हो सकता है जी? प्रोटेक्ट करता है। हाँ, हम सब का वो पालनहार है और रक्षक है, परम रक्षक है। और यस, केयर टेकर ऑफ ऑल, सबकी संभाल करने वाला, सबको पालना देने वाला। और जी जी आपने बताया हीलर, हील्स ऑल, हम सबकी को हील करने वाला, ठीक करने वाला। हम देखते हैं जी, और कोई कर्तव्य याद हो? ब्लिसफुल है, वो विशेषताएं हैं कर्तव्य। तो हम देखते हैं कि एक कारण से हम हमेशा उनको याद करते हैं, जिस परिस्थिति में संकट से उभारते। तो जब भी दुख है, परेशानी है, संकट है, जहां हमने व्यक्तियों को कनेक्ट किया लेकिन अब भी उनसे किसी से भी वो समाधान नहीं मिला, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं? कहते हैं अब तो आपको ही मदद करनी होगी, आपको ही आना होगा, आपको ही मुझे ये अनुभव कराना होगा, हे ईश्वर आपको ये सहयोग देना होगा, आपको इसको ठीक करना होगा। तो हम देखते हैं कि परमात्मा जो है दुख हरता सुख करता है, ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दुख को हर कर सुख देने वाला। वो हमें कैसे ज्ञान की समझ से हमारा दुख हरता है, वो हम यहाँ राजयोगी जीवन में देखते हैं। कोई मैजिकल वॉन्ड नहीं है, लेकिन ज्ञान की समझ से, अपने प्यार की अनुभूति से हमारे दुख को हरता है। दुख की फीलिंग क्यों आ रही है उसकी समझ देकर उसे परिवर्तन करने में हमें सहयोग देता है। और सुख की अनुभूति, जीवन शैली ऐसा बना देता है जिससे हम हर पल हर परिस्थिति में उस सुख का अनुभव करें, सिर्फ टेम्पररी नहीं, एक जीवन शैली के रूप में। तो उस रूप में वो दुख हरता सुख करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट उनका रोल है कि वो पतित पावन है, प्योरिफायर। जैसे आज हम देखते हैं कि हम रोज सुबह क्या करना चाहते हैं, पहले अपने आप को स्नान आदि करके क्लीन करते हैं, कोई स्थान को भी, जैसे यहाँ स्थान पर हम बैठे हैं तो रोज सुबह क्या होता है, स्थान क्लीन होता है, ऑफिस में जाते हैं रोज क्लीन होता है, घर भी आपका क्लीन होता है। तो हम देखते हैं रोज एक जीवन शैली बना दी है हमने, मन हमारा उसको हम कितनी बार क्लीन करते हैं नहीं? तो हम देखते हैं रोज हमें मन की स्वच्छता, अंतर में, आत्मा के अंदर में जो भी थोड़ा थोड़ा किचड़ा है, नेगेटिव फीलिंग्स है, परेशानी, चिंता, फियर, एंजाइटी, किसी के लिए थोड़ी हेट्रेड है, किसी के प्रति इनसिक्योरिटी है, ईर्ष्या की भावनाएं हैं, ये सारा जो किचड़ा है अंतर मन में, उसको रोज क्लीन करना वो उसका रोल है। वो हमें सिखाता है कैसे हमें इसको क्लीन करना है। तो जैसे हम आजकल शरीर के लिए कोशिश करते हैं, और बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा सा कई बार टाइम निकाल के कोई नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करते हैं सो दैट हमारे क्लेंजिंग हो सके बॉडी की, चाहे हम गाइडेड रूप में अपने घर में ही करते हैं, चाहे हम कोई स्थान पर जाते हैं, ताकि बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो क्या हो, रिलीज हो जाए, क्लेंज हो जाए। ऐसे अंतर की जो आत्मा के टॉक्सिन्स है उसको प्योरीफाई करें, उसको शुद्ध करें। वो जो थोड़ा 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 जो रह गया है, कुछ तो हमने अपने पुरुषार्थ से ओवरकम भी किया है, लेकिन बाकी का थोड़ा थोड़ा जो रह गया है, जो कभी कभी इमर्ज होता है, वो हम ही जानते हैं, वो सारे अंदर के टॉक्सिन्स को क्लेंस करना, प्योरिफाई करना, तो वो कार्य परमात्मा का है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि उनका रोल बहुत ऊंचा है, और उनकी कर्तव्य जो है वो भी बहुत ऊंचा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें सहमत है कि उनका रहने का धाम बहुत ऊंचा है। परमात्मा परम धाम निवासी है। नहीं, कल भी मेडिटेशन में, आज भी आपने जहां भी मेडिटेशन किया तो आपको एक यात्रा पर ले जाते हैं सभी, आपको लगता है पता नहीं कहां ले जा रहे हैं हमें तो यात्रा पर हम उस परम धाम में ले जा रहे हैं। तो साइंटिफिकली ये थ्री वर्ल्ड्स हैं। साइंस कहता है कि एक ऐसी दुनिया है जहां हर एक चीज लाइट के स्पीड के नीचे चलती है, विच इज कॉल्ड द अंडर ल्यूमिनस वर्ल्ड, विच इज दिस फिजिकल वर्ल्ड। फिर एक ऐसी दुनिया है जहां हर एक चीज लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग चलती है, विच इज कॉल्ड द ल्यूमिनस वर्ल्ड। और एक ऐसी दुनिया है जहां हर एक चीज लाइट की स्पीड के बियॉन्ड चलती है, विच इज कॉल्ड द सुपर ल्यूमिनस वर्ल्ड। अब लाइट की स्पीड के नीचे चलती है वो ये फिजिकल वर्ल्ड जो अभी हम देख रहे हैं, तो यहाँ कारोबार है, आवाज है, साउंड है, मूवमेंट है, सब कुछ है। जहां लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग चलेगी उस दुनिया में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा? साउंड का जो स्पीड है वो कम है ना लाइट के, इसलिए वहां साउंड नहीं है, मूवमेंट है, एंजेलिक वर्ल्ड उसको हमने कहा, सूक्ष्म वतन। और लाइट के स्पीड के बियॉन्ड, टाइम इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, तो लाइट के स्पीड के बियॉन्ड माना टाइम भी वहां नहीं है। नहीं, तो आत्मा जो है वो सुपर ल्यूमिनस बीइंग है, वो भी मूवमेंट स्पेस टाइम से बियॉन्ड है। यहां बैठे आप एक बचपन की अनुभूति को याद करते हैं, एकदम लगता है आप वहां उस बचपन के एक्सपीरियंस को फिर से रीलिव कर सकते हैं। ऐसे हैं कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे, तो हम तो बचपन में मन के द्वारा चले गए, शरीर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो तत्व जो है वो अंडर ल्यूमिनस वर्ल्ड के हैं, इसलिए आत्मा सुपर ल्यूमिनस वर्ल्ड की है। आत्मा सुपर ल्यूमिनस बीइंग है और वो सुपर ल्यूमिनस वर्ल्ड की है, जिसको हमने परम धाम कहा, जहां समय के बियॉन्ड है, टाइमलेस। परमात्मा भी सुपर ल्यूमिनस बीइंग है, आत्मा का पिता है ना, तो पिता और बच्चे का स्वरूप कैसा होगा? सेम होगा ना, मनुष्य है तो मनुष्य के पिता का स्वरूप मनुष्य जैसा होगा। कोई प्राणी है, डॉग है, उसका पिता वही होगा, हॉर्स है उसका पिता हॉर्स होगा, तो स्वरूप में अंतर नहीं हो सकता है बच्चे और पिता का। इसी रूप से आत्मा भी सुपर ल्यूमिनस बीइंग है, परमात्मा भी सुपर ल्यूमिनस बीइंग है, और रहने का स्थान भी वो सुपर ल्यूमिनस वर्ल्ड है। उसी को हमने ब्रह्म महत्तत्व कहा, उसी को हम फिर परम धाम कहते हैं, सभी धामों से परे शांति धाम कहते हैं, जहां संपूर्ण रूप से शांति है, क्योंकि शरीर से न्यारे हैं। शरीर जो है तत्व है ना, फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर, वो कहाँ का है? अंडर ल्यूमिनस वर्ल्ड का है, इसलिए वो बियॉन्ड नहीं जाता है। तो इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, मन से वहां पहुंचते हैं, आत्मा वहां पहुंचती है मन से। जैसे आप यहां बैठे, आप अपने परिवार को देख सकते हैं, घर को देख सकते हैं, आपकी जहां भी पोस्टिंग है, जहां आपको वापस दो दिन के बाद जाना है, वो उसको देख सकते हैं, मन से वहां पहुंचते हैं। ऐसे ही हम परम धाम में पहुंचते हैं। तो धाम ऊंचा है, ये सभी धर्मों में एक मत है। नहीं? हम कहते हैं ना ओ गॉड अबव, क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है, फिर हम अपने हिंदू भाई बहन भी कहते हैं ऊपर वाला जाने कहते हैं ना, हमारे इस्लाम को हमारे मुस्लिम भाई बहन भी जब नमाज पढ़ते हैं तो कहाँ देखते हैं? ऊपर की ओर। अब साइंस भी कहता है कि जो भी खोज है कहाँ कर रहे हैं? ऊपर की ओर, क्योंकि इस धरती के अंदर, ग्लोब के अंदर क्या है? सिर्फ मिनरल्स है, ओर है, लावा है, नहीं वही सब कुछ है, धातु है ना, और कुछ तो है नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर वर्ल्ड इज बियॉन्ड, इसलिए सारी खोज भी वहां है। तो परमात्मा हमें ये अपना परिचय देते हैं कि मैं परम धाम निवासी हूँ, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप भी परम धाम निवासी हैं। इसलिए जब हम कई चीजों में मूंझते रहे, दुखी हुए, तो हमने कहा भगवान अपने पास बुला लो क्यों? क्योंकि वो घर की हमें खींच है कि हमें शांति की दुनिया में हमें शांति चाहिए, क्योंकि हम उस घर के हैं, वो हमारा स्पिरिचुअल होम है। अब मेडिटेशन में हम मन से वहां पहुंचते हैं और वहां की उस गहरी शांति को अपने अंदर भरते हैं। फिर हम देखते हैं कि परमात्मा जो हमने देखा पहला कि सर्व ऊंच है, दूसरा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला। तो सब कुछ जानने वाला अर्थात क्या जानने वाला, क्योंकि बाकी कुछ तो अभी हम गूगल में चले जाते हैं, हम सब कुछ जान जाते हैं नहीं तो वो क्या जानता है और ये गूगल हमें क्या बताता है तो क्योंकि हमको परमात्मा ने इतनी बुद्धि दी, समझ दी, तो हमने इस फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर लिया है। फिजिकल जो भी चीजें हैं दुनिया में, इस अंडर ल्यूमिनस वर्ल्ड को हमने एक्सप्लोर कर लिया है और इसके बारे में हमें काफी कुछ रिसर्च के आधार से पता है, इसलिए हमने गूगल के द्वारा अभी यहाँ की सारी चीजें हम जानते हैं। लेकिन आत्मा के बारे में, स्वयं की पहचान, आत्मा का ओरिजिनल घर कहाँ है, जो स्पिरिचुअल लॉज हमें गवर्न करते हैं, कर्मा फिलॉसफी और बहुत सारी और चीजें जो आत्मा से जुड़ी हुई है, ये समय का चक्र जो है, इसके बारे में समझ, कैसे परमात्मा बीज है और ये सर्वधर्म के पिताओं ने उस बीज के तरफ हमें इशारा दिया, तो वो कल्प वृक्ष की जो समझ है, तो बहुत सारी ज्ञान की स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग वो परमात्मा हमें देते हैं। इसलिए कहा कि वह सब कुछ जानते हैं, आत्मा से जुड़ी हुई सारी बातें हमें जानते हैं, हमें बताते हैं। अब हम देखते हैं क्यों जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि वो क्रिएटर है, पेरेंट है। जैसे आपके बच्चे के बारे में स्कूल में कोई भी इंफॉर्मेशन पूछनी हो तो किससे पूछेंगे, आपके नेबर को तो नहीं बुलाएंगे ना, आपको ही बुलाएंगे ना, क्यों, आप पेरेंट्स के रूप में क्या है, क्रिएटर हैं, तो इसलिए आप जानते हैं बच्चे के बारे में और उसके आधार से उनकी पालना कर सकते हैं। उसी रूप से हम देखते हैं कि परमात्मा क्रिएटर होने के कारण वह क्रिएशन के जो सीक्रेट्स हैं, जो लॉज इसको गवर्न करते हैं, स्पिरिचुअल लॉज, उसके बारे में जानते हैं और वो हमें समझाते हैं, जिस समझ से हम अपनी डेली लाइफ में और अपने जीवन को ईजी कर सकें। जैसे हमारे पास यूजर मैनुअल होता है ना, वैसे हमारी आत्मा को इस जीवन में कैसे निश्चिंत रहना है, इजी रहना है, रिलेशनशिप्स को हमें कैसे मजबूत बनाना है, हर कार्य में क्षमताओं को कैसे बढ़ाना है, नेतृत्व आत्माओं का कैसे करना है, तो वो सारी जो समझ है परमात्मा बैठकर हमें देते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि वो सब कुछ जानने वाला है। तीसरा हमने जो कहा था कि वो सर्वोपरि है, इज बियॉन्ड ऑल। फिर से एक बहुत सुंदर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यहाँ आता है, लॉ ऑफ एंट्रोपी का। तो ये वास्तव में शब्द तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन सिंपल है कि लॉ ऑफ एंट्रोपी ये कहता है कि कोई भी सिस्टम जो 100% ऊर्जावान है, उस सिस्टम को आपने एम्पावर किया है, वो अब कार्य के लिए तैयार है, तो सिस्टम को जैसे यूज करना शुरू करें तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि उसको यूज किया जा रहा है। अब यूज करते करते जब वो सिस्टम उस स्टेज पर आता है जहां इसकी अब ऊर्जा बहुत कम हो गई है, अब इस सिस्टम को फिर से ऊर्जावान, नेगेंट्रोपी प्रोसेस अर्थात फिर से रिजुविनेट करना है, तो क्या करना होगा, वो सिस्टम के पास खुद को रिजुविनेट करने की अभी शक्ति नहीं है, खुद को सशक्त करने की शक्ति नहीं है, तो क्या करना होगा, उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ना होगा। ये लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है। तो जब सभी आत्माएं जो है उनकी मन बुद्धि संस्कार आपस में डिसअलाइन होकर उन गुण और शक्तियों की ऊर्जा हमारी कम होती जाती है, और वो जब संपूर्ण रूप से आत्मा अपने इस ओरिजिनल गुण और शक्तियों से डिसअलाइन हो जाती है और शक्ति कम हो जाती है, जहां डेली लाइफ में हम ये शक्तियों को यूज नहीं कर पाते, मोबाइल जब डिस्चार्ज होता है तो क्या होगा, मैसेज आएगा, आता है ना हमें मैसेज, वो रेड लाइन आ जाती है, क्यों आता है, हमें संकेत देता है ना कि अभी 15% या कहां कहां 20% में ही वो आ जाता है और कहता है कि आप चार्जर से इसको कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। तो ऐसे सिग्नल्स हमें दिखाई दे रहे हैं वर्ल्ड में, दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। हम कई बार वो मोबाइल का भी मैसेज इग्नोर करते हैं ना, फिर भी काम, क्योंकि बिजी है, कारोबार है, डोंट हैव टाइम, तो वो उसमें भी हम यूज करते रहते हैं, लेकिन हम फील करते हैं वो सब वेव्स वगैरह हमें अफेक्ट करते हैं। तो उसी रूप से यहाँ इस समय भी जीवन में ये सिग्नल बार बार आ रहा है, आ रहा है। रोज आप सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं, सिग्नल आ रहा है, आप तो बहुत समीप क्राइसिस सिचुएशंस में रहते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सिग्नल बार बार आ रहा है, तो ये आत्मा की शक्तियों का सशक्तिकरण, उसके लिए वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी परमात्मा है। तो परमात्मा वो रोल प्ले करता है जहां हम सभी आत्माओं को फिर से सशक्त करना है, इसलिए वह क्या करता है, वो इस साइकिल में नहीं आता है, क्योंकि उसको ये रोल कौन सा है, ये दैट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए गीता में लिखा है कि मैं अजन्मा हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। तो मनुष्य आत्मा एक साइकिल में आती है, जन्म और मरण। हमने जन्म लिया अर्थात आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया, उसके बाद जन्म हुआ, और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसको हमने क्या कहा, मृत्यु। ठीक है, तो साइकिल हुआ, यहां आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया तो जहां आत्मा ने शरीर छोड़ा वहां वहां मृत्यु, और यहां जन्म, वहां दुख यहां खुशी। नहीं, कैसे साइकिल है आत्मा का। तो आत्मा का शरीर में जन्म होना और मृत्यु, तो एक साइकिल हो गया ना। तो इसलिए आत्मा ने अगर जन्म लिया तो मृत्यु भी निश्चित हो गई। तो जन्म लेने से लेकर वहां तक, अब जन्म लिया तो कर्म करना है, कर्म किया तो उसका एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो कर्म का क्या होगा, फल, तो उसको भी अनुभव करना है। तो जन्म मरण कर्म फल दुख सुख, ये साइकिल में सोल को आना है। अब जैसे ही आत्माओं की शक्ति नीचे आ जाती है, आत्मा की जो सोल पावर है, जो वर्च्यूज है, जैसे बैटरी कैसे हम डिस्चार्ज कहते हैं, उसके अंदर में जो अलाइनमेंट है वो डिसअलाइन हो जाता है, तब बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है, ऐसे ना साइंटिफिकली वो अंदर का सारा अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे आप देखिए मन बुद्धि संस्कार आत्मिक स्मृति से डिसअलाइन होकर शरीर से अलाइन हो गई है ना, शरीर से अलाइन हो गई, इसलिए बाह्य व्यक्तित्व को ही हमने अपना स्वभाव अपना व्यक्तित्व समझा, तब धीरे धीरे आत्मा की ओरिजिनल वर्च्यूज की पावर जो है कम हो गई। अब फिर से उसको हमें सशक्त करना है, वहां परमात्मा का रोल आता है, इसलिए कहा गया वो सर्वोपरि। चौथी बात, वो सर्व गुण और शक्तियों के स्रोत हैं। तो सोल को जो भी गुण और शक्तियों की आवश्यकता है वो स्रोत है। जैसे हम देखते हैं शारीरिक रूप में, अगर हमें अपने आप को थोड़ा और सक्षम बनाना है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन करना है, हमारा जो फटीग कम करना है, फिजिकल हमारी जो एक्टिवनेस है वो बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, हम थोड़ा डाइट को ठीक करेंगे, नींद अच्छी करेंगे, तो उससे हमारी फिजिकल एनर्जीज को क्या करेंगे, हम थोड़ा और सशक्त करेंगे। आत्मा अंदर से कमजोर है, हताश है, निराश है, मनोबल की कमी महसूस हो रही है, खुश नहीं है अपने आप से, तो वहां क्या करना होगा। तो बैटरी जो है, जैसे हम देखते हैं मोबाइल जो है, थोड़े समय के लिए दूसरे को आप सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं किसी को कुछ काम करना है, मेल भेजना है, और उसमें बहुत कम ऊर्जा है या उसका डेटा नहीं काम कर रहा है, आप क्या कहेंगे, चलो मैं आपको सहयोग देता हूं, आप हॉटस्पॉट ऑन करके उनको थोड़ा सहयोग देंगे थोड़े समय के लिए, लेकिन रिचार्ज कर सकते हैं नहीं। तो उसी रूप से हम देखते हैं कि थोड़े समय के लिए शायद हमें सहयोग मिल भी सकता है, लेकिन सारे गुण और शक्तियों को फिर से 100% सशक्त करना, उसके लिए हमें उस सोर्स से अपने आप को जोड़ना होगा। तो परमात्मा सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्च्यूज एंड पावर्स है। और पांचवी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सर्व मान्य है, सारे विश्व की हरेक आत्मा का वो पिता है, तो इसलिए उसका जरूर ऐसा ही परिचय होगा जो सर्वमान्य है, सभी दिल से उनको याद कर सके, सहजता से उनके साथ कनेक्ट कर सके। तो देखते हैं, हम एक यात्रा करते हैं जिसमें अनेक धर्म पिताओं को हम देखते हैं कि उन्होंने अपने अनुभव में, अपने ज्ञान के समझ में, जो उन्होंने हमें दिशा दी, उसमें उन्होंने ईश्वर के साथ अपने संबंध को और उसके परिचय के बारे में हमें क्या बताया। क्रिश्चियन धर्म में हम देखते हैं कि क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, काइंडली लाइट, परमात्मा जो है हमारा गॉड फादर है, कहा ना बहुत प्यार से उन्होंने कहा आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, उनका संदेश लेकर आया हूं। क्या संदेश लेकर आया हूं? स्नेह का संदेश लेकर आया हूं, शांति का संदेश लेकर आया हूं। जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने क्या कहा? ईश्वर को याद किया और कहा ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर देना। तो उनका परमात्मा से कितना समीप संबंध दिखाया गया है। और हर बार जब भी उनके द्वारा हीलिंग भी हुई, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में हीलिंग को बहुत महत्व देते हैं, तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा आई टच एंड प्रे गॉड हील्स, मैं तो प्रार्थना करता हूं ईश्वर से आपके लिए, लेकिन आपको हील कौन कर रहा है? उनके तरफ गॉड इज लाइट, काइंडली लाइट। इसलिए आप देखिए चर्च में कैंडल लाइट के रूप में याद करते हैं। गुरु नानक जी ने क्या कहा? बहुत प्यार से हमें याद कराया। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कितनी सुंदर महिमाएं ईश्वर की है। हमारे रोज की हमारे स्पिरिचुअल स्टडी में हर एक धर्म में से कुछ ना कुछ बातें परमात्मा हमें याद कराते हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें एक ओंकार निराकार, वो एक निराकार है। निराकार और साकार शब्द को ये कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, निराकार साकार। साकार मीन्स फिजिकल फॉर्म, निराकार माना जिसका शरीर रूपी आकार नहीं है, आत्मिक स्वरूप है। हमने सोचा निराकार माना जिसका आकार नहीं है, लेकिन जब रचना का आकार है तो रचयिता का तो जरूर होगा। जब रचना इतनी सुंदर तो हम कहते हैं ना उसका रचयिता कितना सुंदर होगा। तो निराकार का महत्व ये है कि वो साकार स्वरूप नहीं, शरीर के पिता नहीं, आत्मा के पिता। सत श्री अकाल, सत्य है श्री श्रेष्ठ श्रेष्ठ अकाल, आत्मा भी अकाल, आत्मा के पिता भी अकाल। तो हम देखते हैं मनुष्य से देवता की एक करत न लागी वार गुरुबाणी में है, मूत पलीती कपड़ धोए, अर्थात बहुत पतित आत्मा को शुद्ध बनाने वाला। तो उन्होंने भी हमेशा उस निराकार सतगुरु को याद किया, इसलिए ज्ञान को ही महत्व दिया गुरु ग्रंथ साहिब। तो ज्ञान की ही को ही महत्व दिया, वही नेतृत्व कर रहा है इस दिशा में गया। इस्लाम को हम जो याद करते हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहन वो भी याद करते हैं नूरे इलाही, अल्लाह का नूर, नूर का अर्थ है लाइट। तो वो भी बहुत प्यार से निराकार स्वरूप को याद करते हैं, साकार को नहीं। वहां भी अगर आप देखो बहुत प्यार से उस निराकार की याद है। तो इसलिए वो संज्ञास्वाद पत्थर जिस स्वरूप में वो याद करते हैं और निराकार रूप में उसको उसके साथ कनेक्ट करते। यहूदी जो है हमारे ज्यूइश रिलीजन, वहां मोसेस जो है धर्म गुरु है। तो उन्होंने अपने अनुभव में कहा कि कैसे उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किस रूप से किया, यहोवा, यहोवा अर्थात बर्निंग लाइट, प्रकाश के रूप में, जिससे उनको प्रेरणा मिली, शक्ति मिली। और उन्हें उन्होंने अनुभव में शेयर किया कि वो 10 कमांडमेंट्स जो है वो उन्होंने उसी शक्ति ने जैसे उनके अंदर प्रेरणा भरकर उन्होंने लिखा। तो उन्होंने भी हमेशा ईश्वर को लाइट के रूप में याद किया है, यहोवा के रूप में जो हम याद करते हैं। पारसी धर्म में आपने सुना अग्यारी कहते हैं उस स्थान को जहां वो याद करते हैं। किसको याद करते हैं? अग्यारी अर्थात फायर टेम्पल। ज़ोरास्त्रिस जो है उनके धर्म गुरु जी हैं और वहां हम देखते हैं उनके टेम्पल में अग्नि का स्वरूप होता है, फायर जो है। वहां भी लाइट निराकार रूप में हम देखते हैं, बहुत प्यार से हम उनको याद करते हैं। फिर हम देखते हैं कई धर्म पिताएं हैं, जैसे हम महावीर स्वामी जी को देखते हैं, जैन धर्म की स्थापना जिन्होंने की। तो आप महावीर स्वामी जी और जो भी उनके 24 तीर्थंकर हैं, तो हर एक के स्वरूप में आप क्या देखते हैं? दिलवाड़ा टेम्पल आप जब जाएंगे तब यहाँ भी आप देखेंगे। तो किस स्वरूप में स्थित है महावीर स्वामी जी? तपस्या में, मेडिटेटिव पोस्चर। किसको याद कर रहे हैं? उस परम शक्ति को याद कर रहे हैं, मेडिटेटिंग विद द डिवाइन, विद द सुप्रीम। हम बुद्धा को भी देखते हैं, गौतम बुद्धा, जिन्होंने तपस्या से परमात्मा से कनेक्ट करके उस तपस्या के बल से ज्ञान का बोध हुआ, फिर उनका स्वरूप आया बुद्धा का। तो हमेशा उनको भी किस रूप से दिखाया है? तपस्या के स्वरूप में, उस परमात्मा की याद में मग्न लीन अवस्था। इसलिए कहा जाता है कि हर कर्म करते हुए हमें उस याद में रहना है। तो स्वरूप में कहते हैं ना, ईटिंग बुद्धा, स्लीपिंग बुद्धा, सिटिंग बुद्धा, अर्थात हर कर्म में रहते हुए उस परमात्मा की याद में लीन। तो हमें हर एक धर्म पिता ने भी उस एक पिता के तरफ इशारा दिया। अब हमने क्यों थोड़ा विचारों में हमारे अंतर हो गए, या हम ये स्वरूपों में क्यों चले गए? हमने अपने आप को क्या समझा? शरीर, शरीर समझा ना? समझ थी कि आत्मा जैसी कोई शक्ति है जरूर, लेकिन आइडेंटिफाई किससे किया? शरीर से, जो हम रोज देख रहे हैं मिरर में, उसी को हमने मैं समझा, उससे आइडेंटिफाई किया। तो हम जब भी ईश्वर को याद करेंगे, अपने आप को ही हम दैहिक रूप में याद कर रहे हैं, तो ईश्वर को याद करेंगे तो वहां भी हमें दैहिक स्वरूप ही आवश्यक होगा। अब आत्मा ने जन्म लिया उस परिवार में जहां क्रिश्चियनिटी धर्म के रूप में उसकी पालना हो रही है। तो जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको क्या समझ दी जाती है? क्रिश्चियन धर्म के बारे में समझाया जाता है, बच्चे को बहुत प्यार से शिक्षाएं अच्छी दी जाती है क्रिश्चियनिटी के अनुसार। अब वो स्वयं को ही शरीर समझता है, तो उसके लिए परमात्मा का स्वरूप कौन सा होगा? दैहिक स्वरूप कौन सा होगा? किस स्वरूप में याद करेगा वो ईश्वर को? जीसस क्राइस्ट के रूप में, क्योंकि दैहिक स्वरूप में उस धर्म में निमित्त कौन है, धर्म पिता कौन है? जीसस क्राइस्ट। तो भले जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज वन, उनको याद करो, लेकिन क्योंकि हम स्वयं देह समझते हैं तो हमें सहजता क्या है? उस दैहिक स्वरूप में ईश्वर को याद करना। अब बच्चे ने जन्म लिया उस परिवार में जहां सिखिज्म की धर्म की मान्यता है, तो वो जैसे बच्चा बड़ा होता है वो ईश्वर को किस स्वरूप में याद करेगा? गुरु नानक जी के रूप में। उसने जन्म लिया उस परिवार में जहां इस्लाम को मान्यता है, तो वो उस रूप में उनके कोई भी धर्म गुरु मोहम्मद हैं, कोई भी रूप से पीर को याद करेंगे। हिंदू धर्म की मान्यता के परिवार में जन्म लिया तो वो किसको याद करेंगे? यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, तो जो भी देवी देवता उनके कुल रूप से हैं, उनके परिवार के हैं, उसी रूप से वो ईश्वर को याद करेंगे। तो हम हरेक ने क्या किया? ईश्वर को दैहिक रूप में याद करना आरंभ किया, और इसलिए क्या हो गया? अंतर हो गए, भिन्नता तो हो गई ना, अंतर ना भी हो लेकिन भिन्नता जरूर हुई। और तब थोड़ा फिर भी धीरे धीरे ये प्रश्न आ गया, फिर ये कौन, ये भगवान राइट है या ये भगवान राइट है? लेकिन अब हमने समझा कि वास्तव में क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं, तो हम सभी आत्माओं का पिता भी एक ही परम पिता है, और हमारे हरेक धर्म पिता ने हमें उसके साथ कनेक्ट करने के लिए इशारा दिया। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब हम अपने आप को क्या समझेंगे? आत्मा समझेंगे। जैसे हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, तब हम अपने आप को इस शरीर से न्यारा समझते हैं, तब हम ईश्वर के साथ भी उस आत्मिक स्वरूप में कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि यहाँ सब करंट चल रहा है ना, करंट कनेक्टेड है, इसलिए हमने लाइट का स्विच ऑन है, तो लाइट्स ऑन है, पंखा ऑन है, लैपटॉप ऑन है, माइक ऑन है। अगर ये करंट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, डिसकरंट हो गया, कनेक्ट डिसकनेक्ट हो गया, जैसे मुझे लगता है 2 दिन पहले कुछ समय के लिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो होगा तो फिर ये कोई भी हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं करेंगे। तो उसी रूप से हम देखते हैं, और जब इसको फिर से कनेक्ट होता है, सपोज कोई कारण से कुछ वायर्स टूट जाती हैं, तो वायर का जब हम कनेक्शन करते हैं तो वो वायर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं? हम उसका जो ऊपर का इंसुलेशन का जो रबर है वो निकालते हैं, फिर जो अंदर की कॉपर वायर्स है उसको जोड़ते हैं, फिर उसको टेप लगाते हैं। अगर वो हमने कॉपर वायर्स नहीं जोड़ा, ऐसे ही 2 वायर को जोड़कर टेप लगा दी, करंट पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कॉपर वायर्स के अंदर करंट पास होना है, वो इंसुलेशन से वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही शक्ति जो प्राप्त करनी है वो आत्मा को परमात्मा से प्राप्त करनी है, एनर्जी को सुप्रीम एनर्जी से शक्ति लेनी है। हम अपने आप को जितना समय देह की अवेयरनेस में रखेंगे, हम परमात्मा के उस एनर्जी से, सुप्रीम लाइट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमने फिर क्या सोचा कि चलिए हम शरीर के रूप में याद करें। तो हमारे धर्म पिताओं ने हमें निराकार रूप में गाइड किया, लेकिन क्योंकि हम खुद शरीर समझते थे तो हमने दैहिक रूप में याद किया। अब राजयोग से हम क्या करेंगे, फिर से अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करते हुए उस सुप्रीम लाइट को याद करेंगे। अब साइंस कहता है कि जब दो ऊर्जाएं मिलती है तो क्या होता है जी, ऊर्जाओं का संचार होता है। अगर हम देखें हिंदू धर्म में, हमने देवताओं के रूप में भी याद किया, लेकिन एक निराकार स्वरूप हिंदू धर्म में भी है। कौन सा शिव का स्वरूप? बॉम्बे में बाबुलनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, हरेक शब्द में नाथ या ईश्वर है ना, और हरेक में कर्तव्य। बाबुलनाथ, बबूल के जो झाड़ है उसमें कांटे बहुत होते हैं, तो कांटों समान हमारा जो स्वभाव संस्कार बन गया है ना, हमारा थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा अहम भाव है, थोड़ा ईर्ष्या का भाव है, इनसिक्योरिटी है, उसकी वजह से हम एक दूसरे को क्या करते हैं, कांटे क्या करते हैं, चुभते हैं, दुख देते हैं। तो वो दुख की लेन देन होती है। तो वो स्वरूप को परिवर्तन करके हमें सुखदायी बनाना, कांटों को फूल जैसा बनाना, सुखदायी हमारे अंदर गुणों की स्मृति दिलाकर हमें सुखदायी बनाना, वो नाथ, वो रोल है उनका। तो उस रूप में हरेक मंदिर का भी स्वरूप का उनके कर्तव्य के पीछे उसका नाम है सोमनाथ। तो सोम रस अर्थात नेक्टर है ना, तो नेक्टर के लिए हम कहानी क्या सुनते हैं शास्त्रों में कि जब कोई व्यक्ति का देहांत हो गया है उसको वो नेक्टर पिलाया और वो व्यक्ति ने फिर से जीवदान उसको मिल गया। तो ये ज्ञान का नेक्टर है। तो हमारा आज का जीवन, अगर अंतर से हम खुश नहीं है अपने आप से, आई हैव एवरीथिंग बट आई एम नॉट हैप्पी बीइंग माई सेल्फ, आई एम नॉट हैप्पी विद द वर्क आई एम, आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम रिसीविंग, मैं खुश नहीं हूं, तो हमारा जीवन कैसा है अंदर से? जैसे जीवन होते हुए भी जीवन नहीं है। तो हम ऐसे जीवन को जब परमात्मा ये ज्ञान की समझ देता है तो ये जैसे एक नेक्टर है और इससे हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है अपने प्रति, औरों के प्रति, जीवन के प्रति, और फिर से हम वही जीवन में बहुत आनंद से और नवीनता से जीवन का अनुभव करते हैं। तो ये ज्ञान का नेक्टर है अमृत, जिससे हमें नया जीवन। हमारी एक दादी जी बहुत प्यार से कहती थी कि जहां खुशी नहीं है वो लाइफ कोमा जैसी है कि है लेकिन सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं, आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो परमात्मा इस ज्ञान की समझ से हमें वो ज्ञान का सोम रस देता है और उससे फिर हम अपने जीवन के प्रति समझ परिवर्तन हो जाता है, हमें अंदर की जो खुशी है और शांति का अनुभव सहज होना शुरू हो जाता है। तो स्वरूप में हम क्या है, समान है, और गुणों में भी समान है। नहीं, आजकल ट्विनिंग करते ना बच्चे और माता पिता, सेम ड्रेस पहनते हैं, अच्छा लगता है ना? अब यहां भी ट्विनिंग है, उसका स्वरूप हमारा स्वरूप सेम, पॉइंट ऑफ लाइट, हम भी पॉइंट ऑफ लाइट, गुणों में भी सेम, वो शांति का सागर, हम शांत स्वरूप, वो प्यार का सागर, हम प्यार स्वरूप, हर गुण और शक्ति में समान बना दिया। जब आप ये कोर्स करने के बाद आप जरूर ये थोड़ा सा प्रयोग करना, जो हमारी रेगुलर स्पिरिचुअल स्टडी है जिसके बारे में आपको कई अनुभव भी सुनाया है हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, और जो आप फिर भी और पैनल डिस्कशन आदि में अनुभव आप सुनेंगे, तो वहाँ रोज की हमारी स्पिरिचुअल स्टडी, जहाँ परमात्मा के रोज के महावाक्य हैं, तो उन महावाक्यों के द्वारा परमात्मा हमें अपने जैसा बनाते हैं, हर गुण और शक्ति में अपने जैसा, वो हायर बेंचमार्किंग सिस्टम हमें देते हैं। जैसे आपकी बेंचमार्किंग होती है ना, आप भी अपने जो पोजीशन में हैं वहाँ जो बेस्ट अचीवर हैं इसके पहले जो भी है, तो आप अपने को बेंचमार्क करते हैं ना, हमें ऐसा बनना है। तो स्पिरिचुअली पे परमात्मा बेंचमार्किंग हमें अपने जैसा बनाते हैं, अपने जैसा हर गुण और शक्ति में संपन्न बनाते हैं, उसी विजन से हमें देखते हैं। तो वो समानता जहां आ जाती है वहां कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, इजी। आज तक हमने ईश्वर को क्या कहा, आप सब कुछ हो और हम कुछ भी नहीं। तो एक सम्मान के भाव से बहुत अच्छा था हमारा, उनके प्रति बहुत सम्मान था, रिगार्ड था, इसलिए हमने कहा आप सब कुछ है और हम कुछ भी नहीं। लेकिन अनुभव में क्या हो जाता है, गैप बहुत है ना। तो डे टू डे लेवल पर कम्युनिकेशन हो सकता है, मुश्किल है, वो सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं है, तो कैसे कम्युनिकेशन हो। अब परमात्मा हमें अपने परिचय के आधार से बताता है कि मैं हर गुण का सागर हूं, लेकिन तुम भी कौन हो, मेरे जैसे। हर गुण शक्ति तुम्हारा स्वरूप है, ओरिजिनल, वो तुम्हारा वर्षा है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इजी इनहेरिटेंस, तो स्वभाव नेचुरल मिल जाता है ना, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। इनहेरिटेंस के लिए कोई मेहनत करनी है नहीं। इसलिए परमात्मा ने बहुत प्यार से कहा कि हर गुण और शक्ति तुम्हारा वर्षा है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ राजयोग के द्वारा आपको ये स्मृति दिलाई जाती है कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आप हुई। और एक है कि आज तक हमने सोचा मुझे शक्तिशाली बनाना है अपने आप को, मेरे अंदर शांति भरनी है, मुझे मुझे अपने को पवित्र बनाना है, तो बहुत बड़ा काम हो गया ना, बहुत मेहनत, बहुत समय लग जाएगा उसके लिए। और यहाँ राजयोग के द्वारा परमात्मा ने कहा तुम हो ही पवित्र स्वरूप, तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम्हारा स्वरूप है ही पवित्रता का। तो परमात्मा की कॉन्सेप्ट के अनुसार, परमात्मा की समझ के आधार से हम अपने बारे में भी समझ सकते हैं और उस समानता को अनुभव करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उनके साथ कम्युनिकेट करना सहज हो जाता है, उस संबंध को हम अनुभव करते हैं। जैसे एक बच्चा घर आता है और जैसे ही उसके माता पिता, जैसे शाम के वक्त आया, रात के वक्त आया, वो लेट हो गया, उसको माता पिता आराम से भोजन पे बैठे हैं, खा रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, आके बैठ जाएगा और जो भी उसको पसंद की चीज है वो लेकर खाना शुरू करेगा, है ना। या बच्चा कॉर्नर में खड़ा होकर आपको दरवाजे पे मम्मी को कहेगा, मम्मी थोड़ा सा मुझे ये दे दो, या थोड़ा सा मुझे ये दे दो, कहेगा, उसका ही सब कुछ है ना। वो तो अधिकार से बैठकर क्या करेगा, भोजन साथ में एंजॉय करेगा। ऐसे ही मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, जैसे उसको याद करते हैं तो उनके सानिध्य में आकर उनकी हर शक्ति को, गुणों को अपने अंदर भरते जाते हैं और उस समानता की अनुभूति से अपने आप को बहुत अंदर से अबंडेंस की, भरपूरता की महसूसता होती। अब जब हम ये गुणों में अपने को भरपूर कर देंगे तो जब ह्यूमन कनेक्शन में आएंगे, इंटरैक्शन में आएंगे, तो क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे। अब वहां से हमने शांति के सागर से अपने आप को भर दिया तो हर कनेक्शन में, कारोबार में वो शांति को क्या करेंगे, हम एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करेंगे तो वहां हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा और वो एक्सपीरियंस फिर हमारे उस स्वभाव को, हमारे उस गुण और शक्ति को और मजबूत बनाता जाएगा। परमात्मा ने अपना नाम हमें शिव दिया, इसलिए यहां कभी कभी आप नाम सुनते होंगे शिव बाबा या बाबा शब्द। तो शिव शब्द संस्कृत का शब्द है और संस्कृत में शिव का अर्थ है बिंदु, तो इसका उनका फॉर्म स्पष्ट हो जाता है। दूसरा इसका अर्थ है बीज, सीड, माना हमारा उनके साथ कनेक्शन क्या है, वो पेरेंट है, सीड है, रोल क्या है उनका हमारे लाइफ में, इज आर स्पिरिचुअल पेरेंट, वो सीड है, फादर है, स्पिरिचुअल फादर है हमारा। और तीसरा शिव का अर्थ है संस्कृत में कल्याणकारी, बेनिफैक्टर, तो सारे विश्व की आत्माओं का, प्रकृति का भी वो बेनिफैक्टर है, इसलिए उस अर्थ से यह नाम शिव कहा गया है। तो इसलिए बार बार हम या तो शिव बाबा कहते हैं या सिर्फ बाबा अक्षर हम यूज करते हैं। यहाँ हमारे जो पिताश्री है उनका भी आपने स्वरूप देखा है मेडिटेशन रूम में, पिताश्री ब्रह्मा बाबा का भी स्वरूप है। लेकिन जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तब हम मन बुद्धि को सुप्रीम फादर से कनेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आप पिताश्री को भी देखेंगे कि वो भी योगिक अवस्था में है, उनके भी मन बुद्धि को उन्होंने किसके साथ जोड़ा है, उस परम शक्ति के साथ जोड़ा है। उनका भी आपको हिस्ट्री के रूप में आगे उनका भी परिचय मिलेगा। इसलिए जब हम बाबा शब्द यहाँ यूज करते हैं तो किसको कनेक्ट कर रहे हैं, शिव बाबा को, सुप्रीम पेरेंट को। और जब हम ब्रह्मा बाबा के बारे में उनके जीवन की कोई बात कहना चाहते हैं तो फिर हम ब्रह्मा बाबा वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब हम ये बाबा बाबा बार बार आप सुनते होंगे कईयों से, तो ये उस सुप्रीम पेरेंट के बारे में बोल रहे हैं। इसलिए यहां हम जब उसको प्यार से याद करते हैं, वो प्यार की महसूसता करते हैं। अब ये हमने कॉन्सेप्ट के रूप में समझा, लेकिन इसका एक्सपीरियंस भी हम जरूर करेंगे मेडिटेशन के द्वारा। लेकिन आज हमारे साथ आपके जैसे ही एक बहुत सीनियर, जो आपने गुरमणि जी से मिले हैं, सतीश भाई से, रिसेप्शन के हमारे सेशन में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। उनका इतना वर्षों का यहाँ ही आपकी देश की सेवा में वाइस एडमिरल के रूप में अभी आपने रिटायर हुए हैं, तो इतने वर्षों से आपने जो ज्ञान का रोज अध्ययन किया, उसमें परमात्मा के इस परिचय के आधार से आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है सतीश भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा फिर भी एक साइंटिफिक माइंड को, एक प्रैक्टिकल माइंड को थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है ना, थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए उसका एक्सपीरियंस क्या है वो आप हमें थोड़ा सुनाएंगे, और फिर हम मेडिटेशन के द्वारा उसको अनुभव भी करेंगे।
ओम शांति।
तो मैं 2011 में पहली बार इधर आया था ज्ञान सरोवर में, इसी तरह SSW कोर्स के लिए। तो उस समय तो मुझे जिस तरह आपको परिचय मिल रहा है, इसी तरह की क्लासेस हुई थी, और तो मुझे योग तो बहुत अच्छा लग गया था उसी समय कि ये राजयोग है, तो मैंने उसको थोड़ा अपना लिया और शुरू किया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इमीडिएटली आई कुड डू रेगुलरली, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा था, पता नहीं चल रहा था। तो हमने फिर कोर्स किया 7 दिन का, फिर उसके बाद भी इतना ये नहीं था, क्योंकि उससे पहले हम पूरी भक्ति मार्ग में था। मैं जैसे कि कृष्ण की भक्ति करता था, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया था 3-4 साल पहले, और रोज सुदर्शन क्रिया करता था मैं, तो उससे भी कुछ फायदा तो होता ही था, अच्छा भी लग रहा था। उससे पहले ईशा योगा भी किया था। फिर एक बार मुझे ऐसे करने के बाद स्कॉट लीडर गाबा ने बताया कि आप अभी कोर्स कर लिया है, ये एक बार इंट्रोडक्शन है, तो एक बार आप इधर आइए बाबा के मिलन के लिए। तो 2012 में हम इधर आए और हमारा वो बाबा का मिलन हुआ। दैट इज देयर वाज ए ये बाबा का मिलन इधर अक्टूबर से मार्च में होता है, तो इस बार हमें ऐसे बुला के, एंड सुबह से लॉट्स ऑफ मोटिवेशन लेक्चर्स एट्सेट्रा, एंड इवनिंग में वो बाबा का मिलन हुआ, जिसमें गुलजार दादी, उसमें जो बाबा की रथ थी, उनको भी मिलने का हमें मौका मिला, और उनसे तो इन दैट वॉज एन इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस एक्चुअली। तो सब पता चल एकदम द मोमेंट गुलजार दादी स्टार्टेड स्पीकिंग बाबाज वॉइस इन द हॉल, देर इज अ इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस, एंड देन यू फील कि देर इज शिव बाबा हु कम्स इन गुलजार दादी, एंड इट वॉज रियल, मीन्स दैट आई फेल्ट, एंड माई वाइफ ऑल्सो फेल्ट एट द सेम टाइम वी डिड दैट। सो उसमें आई गॉट मोर क्लियर क्लैरिटी ऑफ थॉट दैट देर इज something conscious. I had a religious backward bent of mind. My mother is very religious and all that. So we had that in our family already. But that was an experience. Uske baad, I made it a point to do meditation every day in the morning, and it became the thing. So to that extent that abhi to I sleep at 9:30, 10 or even 11, but I always get up at 3 o'clock or 3:30, my eyes open. I don't need an alarm to get up. And jab bhi kuch bhi hota hai, to it is in the morning, you just connect up to God, and it is basically talking affirmative things and trying to do, it gives you lots of solutions, and I have got many solutions. And during this phase, means personally, I was principal director of personnel when I came here. That time I was a commodore. Then I became ACOP HRD, that is Assistant Chief of Personnel Human Resource Development. And I did this appointment back to back. That is 2 years as principal director of personnel, followed by 2.5 years as assistant chief of personnel. And all of you are in the forces. In the army, you know the MS branch. Not very much like MS branch because postings, transfers you have to do. Similarly, others also postings. But I was able to handle that job very well. Though I had a very, very difficult and challenging boss. But at every time, and in the Navy people will know, not many people survive under that boss. But I think this type of meditation helped me to overcome. Because at times it used to be very, very difficult to not to follow your principles, but stick to your principles and yet not agree to the senior. I was able to do that, and I used to always remember somebody is there behind me. At times I thought I must resign from that job if when somebody to that extent, I used to think that if this is not acceptable to me, then I will resign, but I will not listen to something. But I think that strength it gave me, because I realized that if you have to do good for your service, you have to remain in the system. And therefore it gives you much more. Jo sahanshilta ki shakti, sahan karne ki shakti jo milti hai, wo isme hota hai. So at every stage it helped me in that particular stage. And thereafter, of course, I went to as flag officer Karnataka, flag officer Maharashtra area, then Director General Naval Operations, Chief of Staff, Eastern Naval Command, Controller of Personnel Services. The entire COVID was managed of the Navy by me. Then, not my Navy, the team, but I was the head of the team. And similarly, then of course, the Integrated Defense Staff and Vice Chief. So at Vice Chief's office, when I took over as Vice Chief, my predecessor told my wife, ki, just watch out, the amount of workload is so much that positively by the end of the tenure he finishes or somewhere, he'll surely have high BP, he'll have medical problems and so many things. So, but my wife said, maybe, let's see if he's probably handled. And I'm here after the whole tenure is over. We've done, I am very proud to say that the Navy achieved a lot of things during this time, and but I am perfectly fit. I had no problems. I worked maybe 20 hours in a work a day, 18 hours, and this helped me. And as I said in my initial the thing, that I have not missed Amrit Vela and the Murli any day. Even when I was traveling, I could do that. And I didn't find anything. Like I'm traveling from in Rajdhani, 2 o'clock, eyes open, I go through the Amrit Vela. There's a, everything comes online these days, so it just becomes easier. And it gives you that solutions to many issues in that morning time. So it's just not that ki, your sleep is, you're deprived of sleep. You go through this time. And what I used to do, because there used to be lots of meetings throughout the day, and you can't doze in front of your juniors, or when especially presentations happen, if you have not slept well, obviously you feel sleepy. So I used to experience that also. So I used to take a nap between 6 to 7 in the morning. That means get up, do this thing, sleep again at 6 to 7, then go fresh. And after lunch time, I used to take a 10-minute nap positively, which used to refresh me to remain awake. So it was not that I can keep awake throughout. And this is. So I personally have experienced that at every stage, and you go in for difficult meetings, get in difficult situations, just remember that there is Baba behind you, with you, and any solution, any problems come, you detach yourself, consider yourself a soul, the other person also soul, you detach, and then you listen to his problem, you are able to give much easier solutions to the issues. I think, and probably the environment in the office also improves, because you yourself are not the same. Because my staff also used to later tell that there are so many issues coming, but you are not perturbed, you are not this. I said, because these things we can handle, and I should keep telling them, don't worry. Just let things, we will be able to tackle. Just say that sab kuch ho jayega. Because man mein ye tha ki मैं एक कदम बढ़ाऊंगा लेकिन हजार बुझाएं वाला बाबा हमारे साथ पीछे है. तो थैंक यू.